ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय प्रिय सखे पुनः आगः प्रेयसा प्रेषितः किम् वरय किमनुरुन्धे वरय किम् अनुरुन्धे माननीयः असि मे अङ्ग नयसि कथम् इह अस्मान् दुस्त्यज द्वन्द्वपार्श्वम् सततम् उरसि सौम्या अब भाव बदल गया भ्रमर को सौम्य कहने लगे सुशील श्री बधु साकं आस्ते प्रिय सख पुनराग प्रेयसा प्रेषितः किम् वरय किमनुरुन्धे माननीयोऽसि मेऽङ्ग नयसि कथमिहास्मान् दुस्त्यज द्वन्द्वपार्श्वम् सततमुरसि सौम्य श्रीर्वधूः साकमास्ते अपि बत मधुपुर्याम् आर्जपुत्र अधुनास्ते स्मरति स पितृगेहान् सौम्यबन्धुंश्च गोपान् क्वचिदपि स कथा न किङ्करीणाम् गृणीते भुजमगुरुसुगन्धम् मूर्धन्यधास्यत् कदा न प्रिय सखे हे मेरे प्रियतम के मित्र पुनः आगह आगे प्रेषा प्रेषितः किम् क्या प्रेतम ने तुमको पुनः भेजा वरया हमसे मांगो किम् क्या अनुरुन्धे चाहते हो हमारी क्या कामना है माननीय तुम मेरे आदर के पात्र अर्थात पूज्य असी हो मैं मेरा अंग हे प्रिय नयसी तो भ्रमर ने कहा कि हम यही मानते हैं कि आप मधुपुरी चलिए तो ये कहती है नयसी ले चलोगे कथम कैसे यह मथुरापुरी में आसमान हमको दुस्तेज द्वंद्व पार्श्व श्री कृष्ण तो कभी अकेले रहते नहीं हैं, हम मधुपुर की स्त्रियों से घिरे होंगे। भ्रमर कहता है नहीं, बिल्कुल कोई स्त्री नहीं साथ में रहती। तब राधा रानी कहती हैं, लेकिन एक स्त्री तो हमेशा साथ में रहती है, सततम सब समय, और वो भी उरसी वक्षस्थल पर ही, सौम्या हे सोम वंश में उत्पन्न। परम सुशील स्वभाव वाले श्री ही लक्ष्मी वधु उनकी पत्नी बन करके साकं साथ नहीं आस्ते रहती है। तो श्री राधा रानी का भाव बदल गया, अब वे अनुकूल भाव से भ्रमर से कहती हैं। पहले कलहांतरिता के समान वे मान में श्री कृष्ण के दोषों का आविष्कार कर रही थी और दूत को भी वैसा ही कपटी कह रही थी। अंत में कह दिया कि भण्यता मान्य वार्ता, तुम दूसरी बात करो और यहां से जाओ, कपटी के मित्र तुम कपट कर रहे हो और बातें बना रहे हो, हमें कृष्ण से कोई मतलब नहीं है। इतने पर भौंरा चला गया कहीं इधर उधर, भ्रमर का स्वभाव है उड़ करके किसी दूसरे पुष्प पर बैठा होगा या श्री राधा रानी महाभाव में प्रेम वैचित्र्य के कारण ऐसा समझने लगी कि भ्रमर चला गया। गया नहीं था, चरण पर ही था, लेकिन उनको भाव होने लगा कि चला गया, अथवा सचमुच के कुछ देर के लिए भौंरा कहीं चला गया होगा। तब राधा रानी का भाव बिल्कुल बदल गया। यही भाव सब समय रहता है, कभी कभी मान होता है। वे सोचती हैं जब भौंरा आ गया चरण पर, तब ये वाक्य बोल रही हैं। वे थोड़े देर के लिए प्रतीक्षा करने लगी, कहाँ गया मेरा चरण छोड़कर के, कहाँ चला गया। जब आया तब कहती, ओहो मेरे वचन बाणों से ताड़ित होकर भी, मेरे वचन बाणों से ताड़ित हुए चले गए और फिर भी मेरे द्वारा अपमान सह करके भी आ गए। कहाँ गए थे, मथुरा गए थे, प्रीतम ने फिर से तुमको भेज दिया, प्रिय सखे प्रियस्य कृष्णस्य सखे, हे प्रियतम के सखा, पहला संबोधन करते हैं। अब श्री कृष्ण को प्रिय कहने लगे और भ्रमर को प्रिय का सखा, संबोधन में प्रिय सखे कहेंगे, प्रिय सखे अर्थात प्रियतम श्याम सुंदर के सखे, किम प्रेयसा प्रेषित पुनः आगा, क्या प्रियतम ने तुमको भेजा है, मैं तो बहुत उनके विषय में निंदा की बात कही, उनकी निंदा की, सब जाकर के कहा होगा ना, पर इसके बाद भी प्रियतम तुमको भेजे, हमारे प्रियतम सद्गुण के अनंत सागर हैं, इनमें अद्भुत गुण है, मेरे अपराध को क्षमा करके श्याम सुंदर ने पुनः भेजा और पुनः मेरे द्वारा तिरस्कृत होकर के भी, वचन बाणों से ताड़ित होकर के भी तुम पुनः आए, ओहो तुम कितने सुंदर हो, तुम परदोष ग्राही नहीं हो, हमारा दोष तुमने नहीं देखा, फिर आ गए। मैं बहुत प्रसन्न हूं, वरया तुम जो चाहते हो वर मांगो। उसको पहले कपटी कह रही थी, क्या क्या कह रही थी, अब भाव बदल गया तो कहती वरया वरण करो कि मनोरुंध है, तुम क्या चाहते हो। कि मैंने क्या अनुरुंध है, माने अनुरुंध से एक्चुअली द्वितीय में उसके लिए समुदाय करें। कि मनोरुंध है, क्या कामना है तुम्हारी, क्या चाहते हो। माननीय असी, तुम मेरे माननीय हो, मेरे प्रिय के दूत हो, तुम्हारा बहुत अच्छा स्वभाव है। एक बार तिरस्कार तिरस्कृत हो करके भी फिर आना, फिर वैसी चरण को पकड़ना। सुराधना में कहते हैं तुम मेरे पूज्य हो, तुम मेरे प्रिय हो, हे प्रिय भौरा। अंग अंग का अर्थ है हमारे शरीर के समान प्रिय, तुम हमारे प्रिय हो, अतः मैं तुमको कुछ देना चाहती हूं। की मवरुंध है, क्या चाहते हो, मैं तुमको क्या दूं। कितना भाव बदल गया। तो वो भ्रमर भनभन भनभन कर रहा है, तो राधा रानी समझती है कि ये कह रहा है कि हे स्वामिनी, हे वृषभानंदिनी, हे श्री राधे, आपसे एक ही मांग है कि आपके बिना श्याम सुंदर मथुरा में तड़प रहे हैं, आप कृपा करके मथुरा चलिए। ये सब अपने मन का ही भाव है, भ्रमर काहे को कहने जाए, लेकिन राधा रानी ये समझती है कि कह रहे कि मधुपुरी चलिए, मथुरा चलिए। तो ये कहती है तुम उसको ले चलना चाहते हो वहां, फिर भी थोड़ा थोड़ा ईर्ष्या है वहां की, लेकिन वहां हम लोगों का गुजारा कैसे होगा। हम मथुरा जाएंगे तो कैसे कृष्ण के साथ रहेंगे, वहीं पर मथुरा की स्त्रियां घेरे रहती हैं हमेशा, कभी तो अकेले रहते नहीं। दुस्तज द्वंद्व पार्श्व, श्री कृष्ण के लिए द्वंद्व पार्श्व किसी न किसी के साथ रहना, ये त्याग देना बड़ा कठिन है। और वहां पर मथुरा में वे स्त्रियों से घिरे हुए हैं, राधा रानी अपने ही भाव को सब जगह देख रही हूं, जैसे मैं कृष्ण को कृष्ण से इतना प्रेम करती हूं तो मथुरा की स्त्रियां उनको छोड़ती नहीं होंगी, हमेशा घेरे रहती होंगी। अतः मथुरा की स्त्रियां जहां बैठी हैं वहां मैं कैसे जाऊंगी। भंवरा ने कहा कि स्वामिनी जी जब आप वहां आएंगी तो आपको देखकर सब भाग जाएंगी, श्री कृष्ण खुद भगा देंगे कि भागो भागो भागो। वो नहीं बोल रहा है, राधा रानी स्वयं ही सोच रही है कि अगर ये कहे कि मैं जब जाऊंगी मथुरा तो मथुरा की स्त्रियां किस गिनती में है मेरे आगे, वो भाग जाएंगी। लेकिन एक बहुत ढीठ स्त्री है जो कृष्ण के साथ हमेशा रहती है, यहां जब थे तब भी रहती थी, लेकिन हमारे डर से वो स्वर्ण रेखा के रूप में रहती थी। वक्षस्थल पर जो लक्ष्मी जी का निवास स्थान है वो स्वर्ण रेखा है, सांवले शरीर पर पीत वर्ण की जो मावली है वही लक्ष्मी जी का, जिसको श्रीवत्स कहते हैं, वो निवास स्थान है। तो राधा रानी लक्ष्मी जी से हमेशा सौती अदाह रखती है। भ्रमर कहा कि अगर लक्ष्मी रहती है तो रेखा के रूप में रहती है ना, वो तो यहां भी थी जब ब्रज में थे और आप मिलती थी तब भी लक्ष्मी रहती थी रेखा के रूप में। अरे नहीं भ्रमर, जब और स्त्रियां कृष्ण के साथ रहती हैं जैसे हम लोग रहती थी तब वो देवी है ना, अनेक शक्ति है उसमें, माया शक्ति जानती है लक्ष्मी, तो रेखा के रूप में हो जाती थी। और जब कोई स्त्री कृष्ण के साथ नहीं रहती है तो मूर्तिमान होकर के उनके साथ रहती है, अपने स्वरूप में रहती है, देवी बन करके। तू तो रहती ही है, कैसे ले जाओगे मुझको वहां। सतत अंगुल शिशव में श्री वधु साकमास्त, एक एक ही श्लोक में प्रिय साख अंग और सौम में संबोधन कर रहे हैं। तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो, बहुत अच्छे व्यक्ति। अच्छा, वास्तव में तुम तो उस श्लोक के अनुरूप हो कि तृणादपि सुनी चैना तरो दिवस है। तुम अपने अपमान पर कुछ भी ध्यान नहीं दिए, मेरे कठोर वचनों को भुला दिए। अच्छा वही है ना जो किसी के कठोर व्यवहार को भूल जाए, गाली को भूल जाए। मैंने क्या क्या कहा अपने प्रीतम के विषय में और तुम्हारे विषय में, लेकिन तुम सब भूल गए और फिर आए। मैं बहुत बहुत प्रसन्न हूं, बहुत अच्छे हो तुम, परंतु तुम्हारे स्वामी अच्छे नहीं है, श्री कृष्ण अच्छे नहीं है। अभी अनुकूल भाव हो गया है, एकदम क्रोध चला गया है, तब तो दूत के प्रति इतना सुंदर वचन बोल रहे हैं भ्रमर के प्रति। लेकिन ये कहीं बड़ा दुख है, भ्रमर के श्री वधुः लक्ष्मी उनकी पत्नी जैसी सदा साथ रहती है। वधुः का खास पत्नी श्री वधुः, अब वो वधु बन गई है। यहां तो डरती थी हमसे या असखियों से, लेकिन वहां तो फ्री हो गई होगी, अब तो वधु बन गई है। सदा रहती है, जब अन्य स्त्रियां रहती हैं कृष्ण के साथ तो रेखा के रूप में हो जाती है, और जब कृष्ण अकेले होते हैं तो उनके छाती पर चढ़ बैठती है पूरसी, और छाती पर रहती है। उर्सी का अर्थ है कि श्रीकृष्ण के वक्षस्थल पर ऊपर रहती है। ये भी स्मरण आ रहा है कि इतनी ढीठ है, निर्लज्ज है कि विपरीत रति करती है लक्ष्मी उसके पर। वो जब तक रहेगी मैं नहीं जाऊंगी, ये जाने के लिए तैयार है। भाव से श्रीमती राधा रानी मथुरा जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कहती हैं कि जब तक वो श्री है, लक्ष्मी है, और वो भी श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर, तो मैं नहीं जाऊंगी, मैं ये नहीं सह सकती हूं। मैं कृष्ण की सबसे प्रिया हूं, कृष्ण जब अकेले होंगे तब मैं जा सकती हूं, मैं और किसी के साहचर्य को पसंद नहीं करती। इस तरह से लक्ष्मी जी बोल रहे हैं, श्री राधा रानी बोल रहे हैं। इस श्लोक में प्रति जल्प है, जिस जल्प में प्रियतम के अनुकूल बोला जाए परंतु फिर भी साथ करने योग्य नहीं है ये कहा जाए तो उसको प्रतिजल्प कहते हैं। मान गई है राधा रानी, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि वहां नहीं जाऊंगी, मैं परेशान हूं उस लक्ष्मी से। हमारी सौत बनकर के लक्ष्मी हमको सुता रही है। शिल रूप गोस्वामी पाद जी लिखे हैं, अत्र दूतम सम्मान्य अपि, दूत का आदर करके भी और उसकी उक्ति को अंगीकार कर स्वीकार करके भी अनौचित्यम ज्ञापयन्ति, लेकिन कृष्ण के पास जाना उचित नहीं है। ऐसी उक्ति में प्रतिजल्प है, दुस्तेज द्वंद्व भावेस्मिन प्राप्ति नारहत अनुद्धतम दूत सम्मान ने नोक्तम तत्व स प्रतिजल्पकः। ये प्रतिजल्प दूत का आदर करके भी, उसकी बात को स्वीकार करके भी और कृष्ण का संग नहीं, कृष्ण के संग को उचित नहीं बताना, अनुचित बताना, इसको प्रतिजल्प कहा गया। यह बिल्कुल अनुकूल भाव हो चुका है। इसके बाद भी भौरे ने, दूत ने श्रीमती राधा रानी को मनाया कि नहीं, लक्ष्मी वहां नहीं रहती है, उनके यहां प्रकट नहीं होती है, ये आपकी कल्पना है, ये है वो। किसी तरह से उसने मना लिया कि चरण कमल पर वो लौट रहा था, तो श्रीमती राधा रानी मान गई, तो मान गई पूरा। तो अनुकूल भाव से प्रश्न करती है, जो प्रश्न शुरू में ही करना चाहिए था उस प्रश्न को बाद में करें, क्योंकि उस समय क्रोध में थी तो समाचार क्या पूछे। तब पूरा प्रसन्न हो गई हैं तो पूछती हैं, अपि बत मधुपुर जाम आर्जपुत्र धुनास्ते। एक समाचार पूछे, एक प्रश्न है। अपि का अर्थ अभी भी, हे भ्रमर, क्या अभी भी हमारे आर्ज के पुत्र श्री नंद बाबा के पुत्र मधुपुरियम आस्ते, मधुपुरी में ही है ना? इसलिए पूछ रहे हैं कि यदि मधुपुरी में होंगे, मथुरा जी में होंगे, तो यहां से आने में सुविधा रहेगी, बहुत निकट है, कहीं और दूर तो नहीं चले गए। मथुरा में ही है ना? इनको पता है कि किसी ने कहा था, पौर्णमासी जी ने कहा था जैसे तैसे कि कृष्ण मथुरा रहेंगे, द्वारका जाएंगे, ये जाएंगे, वो जाएंगे। तो राधा रानी पूछ रहे हैं कि अभी मथुरा नहीं है ना, गुरुकुल से आ गए हैं ना, अवंतिका में गुरुकुल में श्री कृष्ण और श्री बलराम पढ़ रहे थे, उसके बाद मथुरा में आए हैं। तो आने के बाद तब वे उद्धव जी को दूत बनाकर भेजे। तो राधा रानी पूछती हैं कि हमारे आर्ज पुत्र, पहले आर्ज का अर्थ समझना चाहिए। आर्ज का अर्थ होता है रिजु, सीधा साधा। नंद बाबा एक परम सुशील व्यक्ति, सीधा साधा। तो नंद बाबा को वसुदेव जी ने पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा करके भेज दिया और कृष्ण को ले लिया। वसुदेव जी कृष्ण को रख लिए। जब श्री कृष्ण वृंदावन से गए मथुरा, तो वहां किसी तरह से कृष्ण को रख लिए वसुदेव जी और नंद बाबा को भेज दिया। अब जाइए, गाय देखिए, गोपों को देखिए। तो राधा रानी के यह कहने का यह भाव है कि नंद बाबा को फुसला करके इसी तरह से ठग लिया वसुदेव जी ने और बाबा को भेज दिया कि अब नंदगांव जाइए और कृष्ण को रहने दीजिए। बड़े सीधे साधे हैं। तो सीधे साधे पिता के पुत्र हैं श्याम सुंदर, ये भी उतने ही सीधे हैं। भाव पूरा बदल गया है। आर्ज पुत्र कह रहे हैं। नंद बाबा एक संत हैं, साधु पुरुष, अच्छा है, सरल है, सरल चित्त है उनका। तो जैसे नंद बाबा को वसुदेव जी और जादवों ने भेज दिया ब्रज में और कृष्ण को छोड़ करके आ गए, इतने सीधे साधे हैं कि कृष्ण को वहीं छोड़ करके आ गए। और इसके बाद मैं जानती हूं कि हमारे प्रियतम श्याम सुंदर को उन जादवों ने, वसुदेव जी ने फंसा करके वहीं रख लिया। यही बड़े सीधे साधे हैं, नहीं तो एक दिन भी नहीं रहते। अगर उनको नहीं फुसलाए होते लोग तो वे आ करके ब्रज में हम लोग साथ रहते। जैसे आर्ज हैं नंद बाबा, तो कृष्ण भी आर्ज पुत्र हैं, सीधे साधे। जरूर उनको अनेक जुक्तियों से जादव ने फंसाया होगा मथुरा में, अनेक बात कह करके तब वे रह गए, नहीं तो नहीं रहे होते। आर्य पुत्र से राधा रानी ये कह रही हैं। और आर्य पुत्र खास करके अपने पति को कहा जाता है। श्रीमती राधा रानी का भाव ये है कि मैं तो उनकी पत्नी हूं, केवल लोक दृष्टि से कोई दूसरा पति है, लेकिन मैं तो कभी मानती नहीं, कभी से कोई हमारा संपर्क नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, हमारे वास्तविक पति से हम सुंदर हैं। इसलिए आर्ज पुत्र कह रहे हैं, आर्ज पुत्र मतलब हमारे पति देव। तो अभी वे उज्जैन में हैं, गुरुकुल में है कि गुरुकुल से पढ़ करके और आ गए मथुरा, ये प्रश्न है। बत हर्ष में प्रयुक्त हुआ है, बत हर्ष, हर्ष में बोल रहे हैं। हमारे प्रियतम श्याम सुंदर अवंतिका से पढ़ करके आ गए हैं या सुना है, तो अभी मथुरा में ही है ना। जैसे अवंतिका गए थे ऐसे कहीं दूसरी जगह तो आगरा वगैरह तो नहीं गए हैं, कोई आसपास के शहर में जा सकते हैं, हाथरस जा सकते हैं, आगरा या भरतपुर चले जाएंगे, मथुरा में ही है ना। दूत से भेंट हुई है शुरू में उद्धव जी से, तो राधा रानी ये सब समाचार नहीं पूछी, भ्रमर से आप पूछ रहे हैं कि हमारे प्रियतम मधुपुरजन अधुना आस्ते इस समय भी, अधुना अपि यहां से लिखना पड़ेगा, अधुना अपि इस समय भी हमारे प्रियतम मथुरा में ही है ना। एक एक प्रश्न ये हुआ, ये प्रश्न इसलिए पूछा जा रहा है कि राधा रानी अगर ये सुनेंगे कि मथुरा में है तो बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि मथुरा से उनके आने में सुविधा रहेगी, देर नहीं होगी, दूरी नहीं है। अब दूसरा समाचार पूछ रहे हैं, स्मरति स पितृगेहं सौम्य बंधुंश्च गोपान, हे सौम्य, हे चंद्रमा के समान शीतल स्वभाव वाले, हे निष्कपट आचरण वाले, भावना से पूछ रहे हैं। मथुरा में रहकर आप तो साथ ही रहते हैं श्री कृष्ण के, तो आप जानते होंगे कभी अपने पिता के घरों को याद करते हैं, नंद बाबा के गृह को, नंद गांव को या अन्य जगह भी जो भवन है उसकी याद करते हैं क्या? स्मरति स पितृगेहं अपी प्रश्न में है, क्या अपने पिता का घर याद करते हैं जहां वे जन्म लिए हैं, खेले हैं, खाए हैं, बड़े हुए, थोड़ा बड़े हुए, तो कभी पिता की याद करते हैं, पिता के घर की याद करते हैं? इसका अर्थ क्या अपने मां की याद करते हैं जसोदा जी और नंद बाबा की याद करते हैं? गेहन शब्द बहुवचन में है, गेहन का अर्थ है बहुत से घर, केवल गेहम रहता तो इसका अर्थ है घर। वास्तव में नंद बाबा का जो महल था वो नंद गांव में था, वही उनका मूल गांव है, इसलिए आज भी कहा जाता है नंद ग्राम, नंद गांव। तो नंद गांव है, इसको बंद रखने को कहा था ना, पर्दा डालकर रखना चाहिए। ये इधर क्यों देखने लगते हैं? ये बहुत बुरी बात है। जानते हो कथा कहने वाले का दिमाग किस तरह से डिस्टर्ब होते हैं। कोई आवे ठीक है, आने वाले बैठे हैं जहां भी जगह मिले वो लोग आ रहे हैं, लेकिन इधर से अब देखना एक तक बहुत बुरा है। मैं आपकी दृष्टि को देख रहा हूं, आप श्रोता हैं, मैं कथा कह रहा हूं, तो हमें इस तरह डिस्टर्ब मत कीजिए कि इधर दृष्टि करना उधर करना है करना। मैं उसको कहा था कि पर्दा बांध करके रखूं जिससे कथा में बैठने वाले को कोई दिखाई ना दे कौन आ रहा है कौन जा रहा है। एक तो ऐसे ही ये संस्कृत है, संस्कृत का ज्ञान कम लोगों को है, और किसी किसी को ज्ञान है तो भी कम ज्ञान है। ये सारा प्रसंग जो हम लोग सुन रहे हैं, जिसको सुनने के लिए शास्त्र कहता है, यह संस्कृत में है। राधा रानी के भावों को यह कहा जा रहा है, ध्यान से सुनना चाहिए। वे कहती है कि स्मरति सब पितृगेह, इसमें कहीं भी श्री कृष्ण का नाम नहीं है, केवल नंद नंदन ऐसा है, आर्य पुत्र नंद बाबा के पुत्र, कृष्ण आदि शब्द नहीं है। परम प्रेम से नाम का वे उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं। अनुकूल भाव हुआ है ना, यदि प्रतिकूल भाव है मान है तो ये कृष्ण कृष्ण कह सकती हैं तिरस्कार के लिए, लेकिन ये जन ही कृष्ण शब्द कहेंगे तो इनको इनकी वाणी स्तब्ध हो जाएगी, गदगद हो जाएगी, इसलिए ऐसा नहीं कह रहे हैं, आर्य पुत्र कह रहे हैं। तो क्या ये अपने पिता के घरों की याद करते हैं, गृहों की याद करते हैं? तो नंद बाबा का घर नंद गांव में था, विशाल प्रासाद, लेकिन इसके साथ नंद बाबा के और भी घर थे। गौओं को चराने के लिए जगह जगह छावनी बनाए थे, घर बनाए थे, जैसे गोकुल में, महावन में या गोवर्धन में और काम्य वन में, जगह जगह। श्री कृष्ण बलराम जब गौएं चराते थे तो उनके सुख के लिए नंद बाबा ने कई जगह पर घर बनवाया था। एक साधारण आदमी का भी कई फ्लैट होता है, यहां भी है वहां भी है यहां भी है, तो नंद बाबा के लिए तो कहना ही नहीं, इसीलिए गृहान शब्द का प्रयोग किया गया। स्मृति स पितृगृहान, स स का क्या अर्थ है यहां? स का अर्थ है मथुरा निवासी, जो श्री कृष्ण इस समय मथुरा में निवास कर रहे हैं, तो वहां तो जादुओं की राजधानी है, वहां विहार कर रहे हैं, वहां रह रहे हैं, तो कहीं अपने को मथुरा वाला ही तो नहीं मान लिए? मथुरा में निवास करते हैं तो सिटीजनशिप वहीं का तो नहीं करा लिए, वोटर लिस्ट में नाम तो नहीं डलवा दिए? होता है ना, ये ऐसा होता है, कोई कहीं रहने लगता है तो वहीं का हो जाता है। ठीक है, सह सहकार थे मथुरा निवासी, श्याम सुंदर मथुरा में निवास कर रहे हैं, तो अपने जन्मभूमि की याद करते हैं। जन्मभूमि मतलब नंद बाबा का घर, और नंद बाबा के अनेक घरों की याद करते हैं, अथवा गेहान सबसे तत्पर है कि अपने पिता का घर और इसके साथ साथ और भी जो कृष्ण का गेह है ब्रज में, कुंजे हैं जिन कुंजों में वे निवास किए हैं, और हम लोगों के साथ केले किए हैं, इसको नहीं कह पा रहे हैं। कुंज की याद करते हैं क्या, या गिरिराज जी की गुफाओं में भी वे रहे हैं, तो वे गुफाएं याद आती हैं उनको? और यदि नंद बाबा की याद करेंगे, नंद बाबा के घर की याद करेंगे, तो और सब ब्रजवासियों की याद अपने आप हो ही जाएगी। फिर भी स्पेशल पूछती हैं सौ में, बंधुश्च गोपान, अपने बंधुओं की कभी याद करते हैं? यहां बंधु शब्द से तात्पर्य है ब्रजवासी गोप, नंदगांव के गोप, बरसाने के गोप, या महाबन के गोप, काम्यवन के गोप। गोपान अलग रहे, बंधुश्च अपने बंधुओं की क्या याद करते हैं, जैसे उपनंद महाराज हैं इत्यादि, नंद बाबा के भाई थे उपनंद महाराज, तो उनकी याद करते हैं क्या? और गोपान, गोपों की याद, गोपों के साथ वे गाय चराए हैं इस पूरे ब्रजमंडल में, तो गोपों की, सखाओं की याद करते हैं, श्रीदाम, सुबल, मधुमंगल आदि गोपों की याद करते हैं। अब अंतिम प्रश्न कर रही हैं, तीन प्रश्न हैं, चार प्रश्न हैं, तीसरा प्रश्न कर रहे हैं। क्वचिदपि स कथा न किं क्रीणां गृणीते, भ्रमर तुम सत्य सत्य बोलना, कभी मथुरा के स्त्रियों के बीच में बैठते हैं, अरे वो कभी बैठे ही नहीं, लेकिन ये कल्पना है, कभी मथुरा के स्त्रियों के बीच बैठते हैं, तो क्या कभी हम लोगों की कभी चर्चा अपने मुख से किए हैं? जरूर किए होंगे, राधा रानी को विश्वास है, क्योंकि हम लोग जो सेवा करते हैं कृष्ण की है, वैसी सेवा मथुरा की स्त्रियां क्या करेंगी, उनको कोई लूर सहूर है ही नहीं। इनके कहने का आशय यह है, हम जानती हैं, हम सखियां जानती हैं कि श्री कृष्ण किस बात से प्रसन्न होते हैं, हम लोग उनके लिए माला गुम्फन करते हैं, माला बनाते हैं, बनाती थी जब यहां थे, तो उन मालाओं को श्याम सुंदर बहुत पसंद करते थे और हमेशा सराहना करते थे, संसार में कोई स्त्री ऐसी माला नहीं बना सकती है जैसे तुम बना रही हो, गोपियां बनाती थी। तो कभी माला पहनते समय क्या कभी हम लोगों की याद करते हैं कि इससे कोटि गुना सुंदर माला और राधिका पहनाती थी, चाहे ललिता पहनाती थी? समाज में तो चर्चा नहीं करते होंगे, लेकिन स्त्रियों के समाज में आप तो उनके मित्र हैं, साथ रहते हैं, उद्धव जी को ही सुना करके कह रहे हैं, तो भोरा तुम बताओ क्या कभी श्रीकृष्ण हम लोगों की याद करते हैं किंकरी के रूप में, दासी के रूप में, हम उनकी दासियां हैं, बहुत सेवा की है, तो माला पहनते समय या वीणा बजाते समय, जो वहां की स्त्रियां वीणा बजाती हैं, तो जरूर श्रीकृष्ण कहे होंगे कि बंद करो क्या बजा रही है, जरूर कहे होंगे, राधा रानी का विश्वास ये है, जो वीणा बजाती होंगी तो वे कहते होंगे वीणा जो गोपी जन बजाती है ऐसा नहीं, तो कभी हमारा नाम रखे हैं वहां, राधा नाम की गोपी हमारी बहुत सेवा की है, कि बिल्कुल चर्चा ही नहीं करते हैं, अपी शब्द से ध्वनित है, कभी चर्चा किए हैं क्या या नहीं किए? ये जब मथुरा की स्त्रियां नाचती होंगी गाती होंगी, तो उस समय क्या हम लोगों की याद किए होंगे, करते होंगे, अवश्य याद करते होंगे कि ब्रज की गोपियां जितना अच्छा गाती हैं और जितना अच्छा नृत्य करती हैं, वैसा यहां कोई नहीं गाए है, अर्थात उन स्त्रियों से नहीं, मान लीजिए उन स्त्रियों की निंदा होगी ना, अगर उनके सामने कहें कि ब्रज की गोपियां अच्छा गाती है, तो उन स्त्रियों से नहीं, लेकिन आप तो मित्र हैं, आपसे कभी उनके विषय में बोले होंगे हम लोग विषय में कह रही बेकार गा रही हैं मथुरा की स्त्रियां, ब्रज की गोपियां ही बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छी सेवा करती हैं, तो चामल डुलाना और फिर वीणा बजाना, कुछ वाद्य बजाना, तो जितनी गोपियां अच्छा करती हैं मथुरा की स्त्रियां नहीं कर पाती हमें, तो क्या कभी वे आपसे बातचीत किए हैं कि ये तो गोपियां परम सुंदरी हैं और ये तो बेकार है मथुरा की स्त्री। राधा रानी को भाव हो रहा है कि वास्तव में वे वहां सुखी नहीं होंगे, किसी तरह से उनको वसुदेव जी ने फंसा करके रखा है अपना बेटा बना करके, लेकिन सुखी नहीं होंगे और आने भी नहीं दे रहे जादव लोग। अगर उनको थोड़ी भी फुर्सत मिलेगी तो भाग करके आ जाएंगे, लेकिन वो लोग बांध करके रखे होंगे। तो ठीक है, कभी आपसे एकांत में अवसर मिलने पर, भोजन परोसने पर, कभी श्रीकृष्ण हम लोगों की याद करते हैं। अच्छा ये बताइए कि उनको मथुरा में माखन मिलता है कि नहीं, और भी बताइए, कभी एकांत में किसी वट वृक्ष नीचे जमुना जी के किनारे जाकर के बांसुरी भी बजाते हैं? हमारे प्रियतम को बहुत दुख मिलता होगा उनको बांसुरी बजाने को नहीं मिलता होगा। मथुरा में तो सब पॉलिटिशियन घेरे होंगे उनको, नेता लोग सब बड़े बड़े जादव, तो वे क्या वहां गाएंगे? यहां वृंदावन में थे तो एकांत वन में वट वृक्ष में जहां तहां गाया करते थे, और कभी उनको वहां नाचने को नहीं मिला होगा। तो राधा रानी समाचार पूछ रही हैं तो बहुत दुख में पूछ रही हैं, क्या कभी अपने पिता का, पिता के घर का, मां का, भाइयों का, चाचा का या ताऊ का या अपने सखाओं का स्मरण करते हैं? और कभी हम दासियों की चर्चा करते हैं क्या अपने श्रीमुख से? और अंतिम प्रश्न है, क्या वे यहां आएंगे? यहां आने को कहे हैं, बहुत उत्कंठा हो रही है कि कब आने को कहे हैं, किस दिन आएंगे, और आकर के अपनी भुजा को, अपने बांह को जिसमें अगुरु की सुगंध है, इसको आकर के हमारे सिर पर कभी रखेंगे, हमारे सिर पर अपने चंद्रमा के समान? हरे कृष्णा। कभी अपनी भुजा को जिसमें अगुरु की सुगंध है हमारे मस्तक पर रखेंगे? वैसे पूछना चाहिए था ये कि क्या हमारे कंठ में अपनी वो सुंदर भुजा देंगे, हमको गलवाही देंगे, ये पूछना चाहती हूँ बस। लेकिन दैन में बस बहुत दिन छोड़ करके चले गए हैं मथुरा में, तो पता नहीं वो भाव रहेगा कि नहीं, तो मस्तक पर हाथ रखने को कह रहे हैं, क्या हमारे मस्तक पर, सिर पर अपने हस्त कमल करेंगे, रखेंगे? कहना ये चाहते हैं राधा रानी, क्या हमारे कंठ में अपनी भुजा देंगे? प्रायः श्री कृष्ण अपने बाएं बांह को राधा रानी के कंठ में ही रखकर चलते थे, हमेशा गलवाही दिए हुए। जब भी राधा कृष्ण का आप फोटो देखे होंगे तो गलवाही दिए हुए चलते। तो श्री राधा रानी को भगवान की बाहों में जो अद्भुत सुगंध है उसकी याद आ रही है। हरे कृष्ण फिर बंद हो गया, आप आराम से कीजिए, कोई बात नहीं। श्याम सुंदर अपनी बाम भुजा को श्री राधा रानी के कंठ में डालते थे, गलवाही देते थे। तो राधा रानी यही कहना चाहते, पूछी क्या कभी वे रासलीला की याद किए हैं? हम गोपियों के कंठ में अपनी भुजा डालकर और हमारे साथ नृत्य किए थे, तो कभी रासलीला की याद आती है क्या उनको? कभी चर्चा किए हैं? यह अंतिम प्रश्न है। इसका अर्थ है कि कभी आएंगे और हमारे साथ रासलीला रचेंगे और भी लीलाएं उपलक्षण से समझ ली जाती हैं। बिल्कुल अनुकूल भाव हो गया है। इसको हम एक श्लोक की याद आ रही है किसी का उध कहो सुध सने सपहिले तो यह उध कहो सुध प्यारे पर देश ते कबधों पग पारी हैं। प्यारे पर देश ते कहरा तना करती हरी परी बात में कहरा तना कर मीड़ी हम कबल कर जो मन मारी है लाई लाई पाती छाती कबलों से रही है हाय लाई लाई धरी धरी ध्यान भीर कबल भी धरी लाई धरी ध्यान भीर कबल भी धरी है बननी उचारी है पूरा न कबधो सब बननी से श्याम को सलो न रूप नैननी निहारी है श्याम को सलो न रूप नैननी निहारी है। श्री गोपीजन कहती हैं उधो कहो सुधो सो, पहले सीधा ये संदेश कहिए, पहले यह बताइए संदेश माने संदेश, पहले ये बताइए हमारे प्रियतम प्यारे परदेश से कबैधों पग पारी है कब आएंगे, पहले ये बताइए। परदेश से मथुरा से श्याम सुंदर पहले ब्रज में कब पग पारी है, पग पारने का मतलब पग रखेंगे, कब आएंगे। कहे रत्नाकर तिहारी परी बातन में आपकी बात में पढ़ करके श्री कृष्ण आएंगे आएंगे डेट नहीं बता रहे हैं, तो आपकी बात में पढ़ करके हम कबलो मिली हम कबलो करे जो मन मारे, हम अपने करेजा को मल करके और कब तक मन मार करके रहेंगे। रतन लाई लाई पाती छाती कबलों से रहे हैं, ये जो पत्र लाए हैं तो पत्र को अपने छाती में लगा करके कब तक हमारा हृदय ठंडा होगा धीर रखेगा, लाई लाई पाती छाती कबलों सिरही हैं हा, हम कब तक शीतल होंगे, और धरी धरी ध्यान धीरे कबल लगी धारी है, धारी है हम। और अब ध्यान करने की बात करें तो कृष्ण का हम ध्यान करके कब तक धैर्य रखेंगे, कब वह दिन आएगा जिस दिन हम कृष्ण को उलाहना देंगे, जब आएंगे तो हम उनसे मान करके बैठेंगे कि अब क्यों इतना दिन रह गए मथुरा, क्यों नहीं आए। बैननी उचारी हैं उराहनों का वैधव सब, हम अपने बैननी बैन से वचन से उच्चारण करेंगे, उलाहना देंगे उनको, क्यों इतना देर किए, मैं नहीं बोलूंगी, या इस तरह से कह करके मैं रहूंगी। और श्याम को सलोनो रूप नैना ने निहारी है, श्याम सुंदर का सलोना परम सुंदर रूप हम कब आंख से देखेंगे, पहले ये सब बताइए। उधो कहो सुधो सो सने सो पहिले तो यह उधो कहो प्यारे पार देश ते का वैधों पग पारी है, प्यारे पार देश ते का वैधों कह रो न कर तिहारी परी बात में, कह रो न कर मिली हम कबल करे जो मन मारी है, लाई लाई पाती छाती कबलों सिरही है हाय, लाई लाई पाती धरी धरी ध्यान धीर कबल भी धारी है, धरी धरी ध्यान बननी उचारी है उराहनो को भदो, उचारी है उराहनो को भदो सब, श्याम को सलोनो रूप नैननी निहारी है, श्याम को सलोनो रूप नैननी हरी है, श्याम को सलोन रूप नैननी हरी है, और पूछ रहे हैं कि वो तो सतरस व्यंजन छह प्रकार के स्वाद वाले तरकारी तो बहुत खाते होंगे मथुरा में, क्या नवनीत उनको मिलता है, ताजा माखन मिलता है मथुरा में? और द्वारकाधीश कह करके जादव नरेश कह करके सब लोग उनकी प्रशंसा करते होंगे, गुण गाते होंगे, लेकिन मां यशोदा की तरह या ब्रजवासियों की तरह उनसे कोई सच्चा प्यार करता है, प्रेम करता है? रतन सिंहासन विराजी पाक शासन अलौ, हम तो जानते हैं वे रत्न सिंहासन पर बैठते होंगे मथुरा में, और शासन तो उनका इंद्र तक चलता होगा, स्वर्ग तक, पाक शासन मतलब इंद्र, पाक नाम का एक राक्षस हुआ था उसको इंद्र ने मारा था, पाक बैरी या पाक शासन कहते हैं इंद्रदेव को। तो रतन सिंहासन विराजी पाक शासन अलम, इंद्र जैसा वे सिंहासन पर बैठते होंगे या स्वर्ग तक उनका शासन होगा, जगत चहु पासनी तो शासन चलावे हैं, संसार में शासन चला रहे हैं, राजा बन गए हैं, पर क्या वे कभी जमुना जी के तट पर जाकर के किसी बट वृक्ष की छाह में जाई जमुना तटपे को बट छाही माही पांसुरी उमाही कबो बांसुरी बजावे हैं। बांसुरी छाती को कहते, छाती फुला करके और कभी बांसुरी बजाए, बांसुरी बजाने में छाती फूलती है, बहुत अच्छा प्राणायाम होता है। सटरसा व्यंजन तो रंजन सदाही करे, सटरसा व्यंजन धोलवानी कहूँ सो प्रीत कहूँ पावे, धोलवानी कहूँ सो प्रीत कहूँ पावे। क्या उनको मथुरा में सप्रीत प्रीति के साथ प्रेम के साथ कोई माखन देता होगा? उनको सब्जी तो बहुत खाते होंगे, भुंजिया सुंदिया क्या क्या कई प्रकार के शहरों में लोग खा लेते हैं इसे, लेकिन दही और माखन मिलता नहीं है। तो सटरसा व्यंजना तो रंजन सदाही करे, सटरसा उधो नवनीता हूँ सप्रीत कहूँ पावे हैं, उधो नवनीता हूँ सप्रीत कहूँ कहे, रत न कर बीरद तो बखने सबे, सब लोग द्वारकाधीश की जय जय करते होंगे, लेकिन कोई कोई प्रेम से उनको गोदी में नहीं लिया होगा, चूमा नहीं होगा, कोई इतना प्रेम नहीं किया होगा। और जय जयकार तो सब कर रहे होंगे, लेकिन वो हृदय शून्य जय जयकार, उसमें कोई प्रेम नहीं, कुछ नहीं। कह रत न कर बीरद तो बखने सब, कह रत न कर साची कहो के ते कही लाल न लड़ावे हैं, कोई उनको लाला कह करके उनसे प्यार नहीं किया होगा, प्रेम नहीं किया होगा, स्नेह नहीं किया होगा। केते का तो कितने लोग ऐसा करते हैं, जरा बोलो ना, उद्धव से कहते हैं, अब बताइए कि कितने लोग उनको लाला कह करके प्रेम करते हैं, कोई नहीं। रतन सिंहासन बीराजी पाक शासन ल, रतन सिंहासन जग चाहूँ पासनी तो शासन चलावे हैं, जाई जमुना तट पे कौ बट छाही माही, जाई जमुना तट पे कौ बट छाही माही, बांसुरी ओ माही कब बांसुरी बजावे है, बांसुरी ओ माही कब बांसुरी बजावे है, जाई जमुना तट पे कौ बट छाही माही, जाई जमुना तट पे कौ बट छाही माही, बांसुरी वो माही कब बांसुरी बजावे हैं, बांसुरी वो माही कब बांसुरी बजावे हैं। ये गोपियां पूछ रही हैं सबसे पहले कि ये बताइए कि बांसुरी बजाते हैं कि नहीं। उनको बांसुरी बजाने की फुर्सत भी नहीं होगी और वो घेरे रहते होंगे बड़े बड़े मिनिस्टर लोग मथुरा में। बड़ा दुख में श्याम सुंदर होंगे वहां। तो समाचार पूछने का यही मतलब है। अब श्री गोपीजन कह रही हैं, श्री कृष्ण से विनय कर रही हैं उद्धव जी से बातचीत करते करते, और साक्षात स्फुल्ला हो रही कि श्री कृष्ण हमारे सामने हैं, तो उनसे डायरेक्ट कह रही हैं, फिर ब्रज बसहुं गोकुलनाथ। गोपीजन रो रो करके श्री कृष्ण से कह रही हैं, कि हे गोकुलनाथ, हे वृंदावन नाथ, आप फिर से ब्रज में आ जाइए और यहीं रहिए। सूरदास जी का यह पद है, अद्भुत ढंग से व्यक्त कर रही है। फिर ब्रज बसहुं गोकुलनाथ, फिर ब्रज बसहुं गोकुलनाथ, फिर ब्रज बसहुं गोकुलनाथ, फिर ब्रज। हे गोकुल अर्थात ब्रज के नाथ स्वामी, अब फिर आइए और ब्रज में रहिए, ब्रज में बसिए। अब हम आपको सवेरे जगा करके गाय चराने के लिए नहीं भेजेंगे। हमने आपसे गाय चरवाया है, बहुत अपराध किया, अब हम आपसे गाय चराने के लिए कभी नहीं कहेंगे। फिर ब्रज बसहुं गोकुलनाथ, फिर ब्रज बसहुं गोकुलनाथ, बहुरी न तुम ही जगाय पठवो तुम, बहुरी न तुम ही जगाय पठवो, बहुरी न तुम ही गोधनन के साथ, फिर ब्रज गोधनन के साथ, फिर ब्रज बसहुं गोकुलनाथ, फिर ब्रज। गोधन कहते हैं, गौएं बहुत बड़ा धन है इसलिए गोधन कहा जाता है प्रायः। तो हम आपको सवेरे जगा करके गौओं के साथ वन में नहीं भेजेंगे। एक प्रकार से याद भी दिलाई रहे कि आप जरा उस सुख की याद कीजिए, कितना आपको सुख मिलता था गो चराने में, तो उसके लिए भी आ जाइए। ये एक प्रकार से निमंत्रण है, लेकिन उसको गलती के रूप में कह रहे हैं कि हम गाय चराने के लिए नहीं भेजेंगे। शायद गाय चराने के डर से ही आप मथुरा से नहीं आ रहे हैं, तो फिर गाय चराने के लिए भेजेंगे। और अब आपको माखन खाते समय हम कभी नहीं रोकेंगे। बर जौन माखन खात कब हूँ, बर जौन माखन दई हाँ देन लुटाय, दई हाँ देन लुटाय। अब आप कितना माखन खाएंगे हमारे घरों में आकर के, हम कभी नहीं रोकेंगे। बल्कि खाएं, जितना खाना हो खाइए और बानरों को अपने सखाओं को जितना लुटाना हो लुटाइए, हम लुटाने से मना नहीं करेंगे। बर जौन माखन खात कबहू, बर जौन माखन खात कबहू, गई हों देन लुटाय, गई हों देन लुटाय। और कभी भी माता यशोदा के पास जाकर के उलाहना नहीं देंगे, आपकी शिकायत नहीं करेंगे। कबहून दैह उराहन, कबहून उराहन, जसुमती के आगे जाय, मती के आगे जाय, फिर ब्रज बसहुं गोकुलनाथ, फिर ब्रज बसहुं गोकुलनाथ। ये सब लीलाओं की याद करा रही हैं श्री गोपीजन। अब कभी भी मैया यशोदा के सामने आपके विषय में कोई उलाहना नहीं देंगे हम लोग। और जब जैसे उस समय मां यशोदा आपको बांध रही थी उखल में, तो हम लोगों से कही कि तुम भी रस्सी लाओ, तो हम लोग रस्सी ला ला करके दे रही थी, लेकिन अब रस्सी नहीं देंगे कभी। शायद प्रियतम श्याम सुंदर इसी की याद करके रंग हुए हैं कि ये लोग रस्सी ला ला करके दे रही थी मेरी मां को बांधने के लिए। इन लोक का जो अनुभव इसको सूरदास जी ऐसे व्यक्त कर रहे हैं, वास्तव में याद दिला रहे हैं कि फिर से आप उखल में बांधे जाएंगे, आप आइए जरूर, आप इसको बहुत पसंद करते थे। दौरी का थे दौड़ करके, दाम मने रस्सी न देऊंगी और न तो जसुमती के हाथ में छड़ी ला करके देंगी। गोपी ने छड़ी भी दिया था डरपाने के लिए, किसी को मारने के लिए नहीं, तो लकुटी भी जसुमती के पानी हाथ में नहीं दूंगी। दौरी न दामन देहूंगी, लकुटी न जसुमती पान, फिर ब्रज बसहुं गोकुलना। दौरी दामन देऊंगी, लकुटी न जसुमती पान, चोरी न देऊ घर किए अगुनन कहीं हान, जब मैया आपको अब कभी बांधेगी तो हम दौड़ दौड़ करके रस्सी नहीं देंगे उसको, और न तो माता यशोदा के हाथ में हम कोई छड़ी देंगे, और आप कुछ भी चोरी करेंगे चोरी को हम उघारेंगे नहीं, कहेंगे नहीं। ये लोग जाकर के माता यशोदा के सामने शिकायत करती थी कृष्ण की, ये चोरी किया, ये किया, बर्तन फोड़ा, बच्चों को रुलाया, तो अब चोरी हम लोग उघारेंगे नहीं, जितना चोरी करना हो आप कीजिए, कि अवगुण न कहीं हो आन, और कोई भी आपका अवगुण हम कहेंगे नहीं, कि हमारा चीज चुराया, हमको गाली दिया, हमको भाभी कहा, ये कहा, ये कहा, ये कोई भी हम शिकायत आपकी नहीं करेंगे, कहीं हो न अवगुण आन, और कोई अवगुण हम कहेंगे नहीं। और अंत में श्री राधा रानी कहती हैं, करी हौन तुम सो मान हठ, करी हौन तुम सो मान हठ, हठि हौन मांगत दान, हौन मांगत। हे प्रियतम, मैं आपसे कभी मान नहीं करूंगी। शायद इसी की याद करके मथुरा में हमारे प्रियतम रह गए कि मैं बहुत ज्यादा रुष्टी रहती थी, मान करती थी, तो उनको मनाने में परिश्रम पड़ता था। इतौ श्रम तब ना ही न तब हूं भयो, ये बहुत परिश्रम फील करते थे। कहते थे ना कि इतना परिश्रम हमको किसी काम में नहीं हुआ, मैं मत्स्यावतार लिया, बाराह अवतार धारण करके पृथ्वी को उठाया, लेकिन उसमें भी आनंद था, खेल खेल में उठाया, लेकिन तुमको मनाने में बहुत परिश्रम होता है। राधा रानी से कहते, कई लीला कहे हैं कि इसमें परिश्रम नहीं हुआ, इसमें नहीं हुआ। समुद्र मथा जा रहा था, मैं कच्छप रूप धारण करके मंदराचल को अपने पीठ पर उठाया, लेकिन उसमें भी इतना मेहनत नहीं पड़ा जितना तुमको मनाने में मेहनत पड़ता। कभी कभी भगवान रो देते थे, राधा रानी नहीं मानती थी, चरण में गिरते थे और रो देते थे, तब भी नहीं मानती थी। उसके बाद ललिता जी समझाने लगती थी कि तुमको क्या हो गया है, इतने प्रियतम प्रेमी हैं और फिर भी तुम इस तरह से भाव तने नहीं रहती, भाव को ताने रहती, फिर भी नहीं मानती थी। तो शायद राधा रानी को यही भाव हो रहा है कि मेरे मांग को याद करके भी प्रियतम श्याम सुंदर नहीं आते होंगे, तो ये कह रहे हैं। करी हूं न तुम सो मान हठ, करी हूं न तुम सो, मैं हठ पूर्वक आपसे मान नहीं करूंगा। या तो उद्धव जी से संदेश भेज रही हैं या मन में स्फुरित भगवान से कह रहे हैं, संदेश भेजना ज्यादा अच्छा है। ये उनको संदेश दे रहे हैं कि कहना कि हे गोकुलनाथ, आप ब्रज में रहिए, कहीं मत जाइए, अब हम लोग आपको नहीं सताएंगे। तो राधा रानी कहती है करिहौं न तुम सो मान हट, अब मैं मान नहीं करूंगी और कदाचित करूंगी भी तो हठ नहीं करूंगी, अब एक बार मनाएंगे मान जाऊंगी। और हठियौं न दान मांगत दान, और जब आप दान घाटी में या सांकरी खोर में हमसे दही का दान मांगेंगे, गोरस का दान मांगेंगे, तो मैं हठ नहीं करूंगी, नहीं देने का हठ नहीं करूंगी, एक बार मांगेंगे दे दूंगी, बल्कि बिना मांगे हम लोग आपको दिया करेंगे। कितना सुंदर पद है, लेकिन हमको तो गाने आता नहीं। करी हूं न तुम सो मान हठ, हठी हूं न मांगत दान। मैं पूरा गा दिया, करी हूं न तुम सो मान हठ, हठी हूं न मांगत दान। मेरे पूरा कर लेने के बाद गाइए, करी हूं न तुम सो मान हठ, हठी हूं न मांगत दान। कही हूं न मृदु मुरली बजावन, करन तुम सो गान। और ये भी भावना है कि श्याम सुंदर को मुरली बजाने में बहुत परिश्रम पड़ा वृंदावन में, क्योंकि बांसुरी बजाने के लिए उनको तीन जगह से टेढ़ा होना पड़ता था, इस तरह खड़ा होना पड़ता था। इन लीला की याद करा रहे हैं, त्रिभंग ललित मुद्रा में श्याम सुंदर खड़े होते थे, तीन जगह टेढ़ा, एक तो गर्दन टेढ़ा करके बांसुरी बजाते थे, बाम बाहु कृत बाम कपोलो, बाएं कंधे के तरफ बायां कपोल करते थे, गर्दन टेढ़ा और कमर टेढ़ी करके खड़े होते थे, और पैर टेढ़ा, दाहिना पैर बाएं, बायां पैर दाहिने। तो गोपीजन ये भाना करें कि प्रियतम को बांसुरी बजाने में बहुत परिश्रम पड़ा वृंदावन में, टेढ़ा खड़ा होना पड़ता था। ये तो आनंद है श्याम सुंदर का, बांके बिहारी का वो खड़े इसी तरह से होते हैं, लेकिन गोपियां ऐसी भावना कर रही हैं कि उनको बड़ा परिश्रम पड़ा और जब बांसुरी बजाने की याद आती होगी तो इसी डर से नहीं आ रहे होंगे, ब्रज में वृंदावन में बांसुरी बजाना पड़ेगा अब कौन जाए इतना परिश्रम कर। तो गोपीजन कहती हैं कि कहीं हूं न मृदु मुरली बजावन, अब आपसे हम कभी मुरली बजाने के लिए नहीं कहेंगे। करण तुम सो गान, और गान कला गान में भी मेहनत पड़ता था, गीत गाने में आलाप लेने में, तो आपसे हम कभी गान करने के लिए नहीं कहेंगे, आराम से आइए रहिए यहां, न बांसुरी बजाइए न किसी को मनाइए, चोरी कीजिए कुछ भी कीजिए, आपकी अवगुण को नहीं कहेंगी। इसका अर्थ है कि इन सब लीलाओं की याद करा रही हैं गोपियां, जिसे अवश्य कृष्ण आज ही भाग करके आ जाएंगे। कही हूं न
चरणन देन जावक गुहन बेनी फूल,
हम आपसे कभी अपने चरण में महावर लगाने के लिए नहीं कहेंगे। श्रीमती राधा रानी के चरणों में भगवान मेहंदी लगाते थे, उसको महावर कहते हैं, तो अब आपसे कभी चरण में महावर लगाने के लिए नहीं कहूंगे, और आपसे मैं कभी नहीं कहूंगी कि हमारे बेणी में, हमारे चोटी में फूल गुथी है। श्याम सुंदर इस लीला में बहुत आनंदित होते थे और इस लीला की याद करा रही हैं राधा रानी।
कही हूं न चरणन देन जावक गुहन बेनी फूल,
मैं आपसे कभी नहीं कहूंगी कि मेरे केस को बेनी बनाइए और इसमें फूल खोसिए। इसमें कोई श्याम सुंदर को परिश्रम पड़ा होता तब नहीं बात हो, तो उसमें सबसे ज्यादा आनंद लेते थे, तो ये इस लीला की याद कराई जा रही है।
और कही हूं न करन सिंगार बट कर बसन जमुन कूल,
और श्रृंगार बट में मैं आपसे कभी नहीं कहूं कि मेरा सुलह श्रृंगार करो। वृंदावन में एक श्रृंगार बट है, राधा दामोदर मंदिर के पास ही है, वहां पर श्याम सुंदर प्रिया जी का श्रृंगार किया करते थे, माला पहनाना, बेणी गुथना, चरणों में महावर देना, और सब चरणों में महावर देना तो एक अलग चीज है, श्रृंगार नहीं है। तो मैं आपसे अपना श्रृंगार करने के लिए कभी नहीं कहूंगी। कही हूं न करन श्रृंगार बट तर, बट के नीचे, श्रृंगार बट के नीचे मैं आपसे अपना श्रृंगार करने के लिए नहीं कहूंगी। बसन जमुना कुल, और श्री कृष्ण को मैं नहीं कहूंगी, आपसे एक नहीं कहूंगी कि आप जमुना के तट पर बैठिए, क्योंकि गोपी जनों को यही अवसर होता था जब गांव में चले जाते थे, ब्रज जिसको कहते हैं, गांव में, तो वहां पर तो घर के लोग सब भरे रहते थे, समाज के लोग, कई निंदक भरे रहते थे, तो वहां तो गोपियों को कोई अवसर नहीं मिलता था कि श्याम सुंदर पर देख भी सके, अवसर मिलता था जमुना जी के किनारे, श्याम सुंदर जाते थे कहते थे कि हम बलराम जी जो रहे होंगे, नंद बाबा जो होते होंगे, मैं जल्दी जा रहा हूं, गाय दुहवाना है, ये करना है। तो गोपियां कहती नहीं बैठो, जमुना जी के तट पर बैठ बात करो। तो अब श्री कृष्ण को बैठना पड़ता था। इसकी भी याद करके राधा रानी कहती हैं कि बसन जमुना कुल कहीं हूं ना, वहां से तट पर मैं जमुना तट पर बैठने के लिए आपसे नहीं कहूंगी। अर्थात जमुना तट की याद करके और मेरे साथ बैठने के लिए आप अवश्य आ जाइए, ये कह नहीं रही हैं, लेकिन कहने का भाव यही है। कहीं हूं न चरणन देन जावक घुन बेनी फूल, कहीं हूं न करण श्रृंगार बट पर बसन जमुना कुल, जमुना किनारे बैठने के लिए नहीं कहूं। और अब ये याद करें कि रासलीला में प्रियतम को बहुत परिश्रम हुआ था रोज रोज, तो कहने अब रासलीला नहीं कराऊंगी, आपको नाचने के लिए नहीं कहूंगी। भुज भूषण जुत कंध धरी के रास नृत्यन करा, भुज भूषण जुत मेरे भुजा में बाह में अनेक भूषण रहते थे, चूड़ियां रहती थी क्या क्या, और इनसे मैं श्री कृष्ण का कंठ पकड़ करके साथ में नाचती थी और नचाती थी। तो हे प्रियतम, अब भूषण युक्त अपने भुजाओं को अपने कंध पर रख करके मैं आपसे नृत्य नहीं कराऊंगी, रास नृत्य न कराऊंगी, रास लीला नहीं कराऊंगी, हम बस आराम से खाइए पीजिएगा नाचिएगा मत। अद्भुत ये उक्ति है। और हों संकेत निकुंज बसी के दूती मुख न बुलाऊं, और संकेत वन में जहां संकेत गांव है, मैं संकेत वन में बैठ करके और दूती भेज करके ललिता को या विशाखा आदि किसी को भेज करके आपको बुलाऊंगी नहीं। राधा रानी भेजती थी दो तीन और बुलाती थी, तो ये भावना करेंगे शायद कृष्ण को आने में बहुत परिश्रम हुआ, पैदल ही आना था ना, कोई मोटरसाइकिल और कार तो थी नहीं, तो परिश्रम पड़ता था श्री कृष्ण को आने में, उनके हिसाब से राधा रानी के हिसाब से भाव से। तो अभी मैं संकेत निकुंज में, संकेत का अर्थ होता है स्त्री पुरुष का मिलन स्थल, ये संकेत बिहारी हैं राधा रमण जी, संकेत गांव में, नंदगांव बरसाने के बीच में पड़ता है संकेत। तो संकेत का अर्थ है समय संकेत निकेतन वैसल निपुणित तो ही बना, संकेत का अर्थ है स्त्री पुरुष के प्रिय प्रियतम के मिलने का स्थान, संकेत का अर्थ है ये नहीं होता है कुछ इशारा, इसका यह अर्थ नहीं है संकेत। तो ऐसे स्थान पर संकेत बल में मैं दूती मुख न बुलाऊं, दूती को भेज करके मैं आपको नहीं बुलाऊंगी, ये सब गलत लीलाएं हैं, इसको श्री गोपी जान और विशेष करके श्री राधा रानी एक अपराध की भावना करके कृष्ण से व्यक्त कर रही हैं, जबकि कृष्ण का सौभाग्य था, कृष्ण अपना सौभाग्य मान करके ये सब कार्य करते थे, गोचर आना या राधा रानी का श्रृंगार करना, और अपने आनंद में वे दही लूटते थे, माखन मांगते थे। और गोपियां जब यशोदा जी से शिकायत करने जाती थी तो श्री कृष्ण बहुत आनंदित होते थे, पर अब इन सब कामों को अपराध मान करके गोपियां कह रहे हैं कि अब हम ये सब नहीं करेंगे, आप अवश्य आइए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, न चरण में गिर कर मनाना पड़ेगा, न श्रृंगार करना पड़ेगा, न रासलीला करनी पड़ेगी, तो अवश्य आप आइए। सो है ना, तो राधारानी कहती है एक बार जो दरस दिखवाहु प्रीत पंथ बसाए, चंवर करो चढ़ाए आसन नयन अंगन लाए। हे प्रियतम आप एक बार ब्रज में आ जाइए, मैं आपको आसन पर बैठा करके आप चामर डुलाऊंगी, पंखा डुलाऊंगी, और मैं नयन अंगन लाए, मैं पूरे नेत्र से आपको देखूंगी, दर्शन करूंगी, अपने शरीर से आपकी सेवा करूंगी, जो भी सेवा है मैं साथ आपकी सेवा में समस्त देह को लगाऊंगी, भोजन बनाना और पाद संवाहन आदि करना, ये सब सेवा करूंगी, लेकिन आप एक बार आइए। एक बार जो दरस दिखवाहू प्रीति प्रीति पंथ बसाय, चंवर करो चढ़ाय आसन चंवर करो नया नया अंगन लाय, नया नया अंगन लाय, देहु दर्शन नंद नंदन, देहु दर्शन मिला नहीं थी आस, सूर प्रभु की कुंवर छवि को, सूर प्रभु की मरत लोचन प्यास, हे नंदनंदन एक बार आइए, केवल दर्शन की लालसा है। सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहते हैं कि प्रभु की कुंवर छवि पर, श्री कृष्ण की बाल छवि पर मरत लोचन प्यास, हमारे नेत्र प्यास से दर्शन की लालसा से मर रहे हैं, मरत लोचन प्यास। फिर ब्रज बसहु गोकुल नाथ, फिर ब्रज बसहु गोकुल नाथ, ये राधा रानी का ही खास उद्गार है यह पद, फिर ब्रज बसहु गोकुल नाथ।
छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद, छवि को सदन त्रिषिता चखनी लाल कब दिखाई हो, छवि को सदन लाल चटकिलो भेष करे चमटकिली भाति सोही, चटकिलो भेष चटकिली भाति सोही, मुरली आधर भरे लटक आई हो, मुरली आधर लोचना ढुराय कछ मृदु मुस्काय नेहा, लोचना ढुराय धीनी बतियानी लड़काय बतराई हो, विराजरत जिए जनि प्राण प्यारे कृपा विराजरत जिए प्राण प्यारे कृपा निधि आनंद को घन बरसाई हो
छवि को सदन छवि के आश्रय भवन छवि के भवन आप हे प्रियतम आप कब ब्रज में आएंगे और आकर के आनंद का घन बरसाएंगे आपका स्वरूप सौंदर्य का आगार है मोद मंडित बदन चंद परम सुंदर शरीर को और प्रसन्नता से मंडित बदन चंद्र को हमारे त्रिषित नेत्रों को प्यासे नेत्रों को हे लाल कबधों दिखाई हो कब आकर के दिखाएंगे आप अपने परम सुंदर शरीर को और प्रसन्नता से सुघराई से मढ़े हुए बदन चंद्र को कब दिखाएंगे हमारे लोचन प्यास से तड़प रहे हैं चखनी मन आंख चटक किलो भेष करे मटक किली भांति सोही आप अपने चटकीले वेश में जो पहले यहां ब्रज में रहते थे और मटक किली भांति सोही चटक मटक इसको कहते हैं मुरली अधर धरे लटकत आई हो और मुरली को अधर पर रह करके और झूमते हुए गाते हुए कब आएंगे हमारे सामने लटकत आई हो लटकत कहते हैं कि टेढ़ी चाल से चलते हुए झूमते हुए आएंगे लोचन ढुराए कछु मृदु मुस्काए आप आंखों से हम पर देखते हुए और हमको देख करके मुस्कुराते हुए नेह भीनी बतियानी स्नेह से सिक्त बात कब आप बोलेंगे लड़काय बतराई हो हमसे कब आप बात करेंगे और लड़काय बतराए जैसे पुराने आदमी बात करते हैं सयाने आदमी वैसे नहीं श्रीकृष्ण लड़के हैं ही लड़के की तरह कुछ बोलना कुछ मुस्कुराना आधी बात बोलना फिर और कुछ दूसरी बात बोल देना लड़काय बतराई हो विरह जरत जी जानी आनी प्राण प्यारे मैं विरह में जर रही हूं इसको जान करके हे हमारे प्राण प्यारे हे कृपा के समुद्र कृपा निधि आनंद को घन बरसाई हो आप हमारी दशा देख करके आनंद का घन बरसाएंगे हमें परम आनंद होगा घन मन बादल भगवान कृष्ण को आनंद घन कहते हैं या घनानंद और कवि का नाम भी है आनंद घन घनानंद
छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद छवि को सदन छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद छवि को सदन मोद सीता चखनी लाल कबधों दिखाई हो सीता
हमारे नेत्र प्यासे हैं हे लाल आप कब अपने मुख को दिखाएंगे श्री कृष्ण का एक नाम ही है लाल और उसमें लाल जी लगाया जाता है लाल जी एकदम अगर लाल कहा जाए तो उसका अर्थ है श्री कृष्ण बहुत प्रसिद्ध नाम है लाला लाल जी जो बहुत प्रिय हो लालन करने जब उसको लाल कहो तो हे लाल आप कब अपने को दिखाएंगे।
चटकी लोभेश करे मटकीली भांति सोही,
चटकीलो भेष का अर्थ है कि अपने ढंग का पोशाक आप अपने स्वयं पहनते हैं, ऐसा पोशाक कोई नहीं पहनता है। भेष वस्त्र तो पहनते ही हैं, पीताम्बर कछनी काछे हुए, धोती लटका कर कभी ब्रज में नहीं पहन है। और भगवान जैसे ये बिल्कुल सीधे साधे नहीं हैं, टेढ़े भगवान हैं, बांके बिहारी है। बांके मतलब टेढ़ा होता है, सब चीज में बांका, बोली भी टेढ़ी, चाल भी टेढ़ी, मुकुट भी टेढ़ा, खड़ा होना भी टेढ़ा। ये तो टेढ़े है भी टेढ़ी राधा रानी, राधा रानी भी टेढ़ी है, उनकी बात अजीब निकलती है। गोपी सब टेढ़ी है, जमुना जी टेढ़ी है, वृंदावन धाम टेढ़ा है। इसको तो ये इनका चटकीला भेष है, जो भेष किसी के भी मन और आंख को हर लेगा। और मटकली भांति सोई, मटकली भांति, और मटकली भांति प्रकार क्या होगा आपके आने का, मटकते हुए न मटकी मारते हुए, कभी इधर देखना कभी उधर देखना, हंसना है। भगवान विष्णु और भगवान श्री राम बिल्कुल सीधे साधे चलते हैं, कोई स्त्री उनके नजर को न पकड़ सके, सीधा चलते हैं। विशेष करके श्री राम इतने सीधे साधे हैं, इतने सज्जन हैं कि वे किसी के तरफ ऐसे देखते नहीं हैं, ऐसे आनंद में हंसते रहते हैं। वो तो आनंदमय है, आनंद में, लेकिन कोई स्पेशल किसी को देख करके मुस्कुराए ऐसा नहीं करते। पर श्री कृष्ण तो बिना इधर उधर देखे, बिना मुस्कुराहट के चलते ही नहीं है, टेढ़े हैं, तीन जगह से टेढ़े हैं। इसीलिए बिहारी कवि बहुत एक जुक्ति बसाए हैं कि कृष्ण को कैसे हृदय में रखा जाए। तो एक पद लिखे हैं, दोहा, करौ कुबत जग कुटिलता, तजौ न दीन दयाल, दुखी होगे सरल हिये बसत त्रिभंगी लाल। हे श्री कृष्ण, मेरे जीवन की साध यही है कि मैं आपको अपने हृदय में बसा लूं, और मैं जानता हूं कि आप तीन जगह से टेढ़े हैं, अतः मैं अपने हृदय को सीधा नहीं कर रहा हूं। भले दुनिया हमारी निंदा करे, कुछ भी करे, मैं अपने हृदय को टेढ़ा रखा हूं। टेढ़ा का अर्थ है कि इसमें अज्ञान है, कुछ है, दोष भरा हुआ है, अंधकार भी है, तमोगुण है। तो मैं जब से सुना हूं कि आप टेढ़े हैं, तो मैं हृदय को भी टेढ़ा किया हूं। एक टेढ़ा का अर्थ हुआ ऐसे बेंड, झुका हुआ, लेकिन इस टेढ़े हृदय का मतलब है पाप से भर करके रखा हूं, कपटी हूं। ये तो जब मैं ये सोचा कि टेढ़े हृदय में टेढ़े कृष्ण को बैठा लूंगा, सीधा हृदय में तो आप अटेंगे ही नहीं, कैसे अटेंगे, तिरछी वस्तु है, टेढ़ी है, तो सीधा में कैसे अटेंगे। दुखी होगे बसत ही है, करो कुबत जब कुटी लेता तजो न दीन दयाल, दुखी होगे बसत ही है। कैसे हैं दुखी होगे, त्रिभंगी लाल, आप त्रिभंगी लाल है मेरे सीधे साधे हृदय में आप नहीं बस पाएंगे, आपको आपको फिर सीधा होना पड़ेगा, तो कितना कष्ट होगा। तो आपके साइज के अनुसार मैं अपने हृदय को बना करके रखा हूं कि एक बार बैठा दूं तो फिर आप निकल ना पाएं। टेढ़े हृदय में टेढ़े कृष्ण रहते हैं, वो ये युक्ति निकाले हैं कि कृष्ण को कैसे मैं हृदय में बैठाऊंगा। तो श्री कृष्ण चलते हैं तो मटकीली भांति, और वैसे ही बांसुरी मुरली अधर अधरी लटकते आई, मुरली अधर पर दल्लह करके और झूमते हुए गाते हुए मुस्कुराते हुए चलते। श्रीकृष्ण की चाल ऐसी है कि उस पर कौन नहीं मोहित हो जाएगा। इस तरह चलते नाचते हुए चलते हैं। कभी सीधा नहीं चले, द्वारका में जाकर के भले सीधा बैठे होंगे, सीधा चले होंगे, लेकिन ब्रज में ये मटकीली भांति, और उसी प्रकार से सो ही, मतलब उसी प्रकार से अधर पर मुरली रहकर झूमते हुए चलते। लोचन ढुराए कछु मृदु मुस्काए, में भीनी बतियाए लड़काए बतराए। अब कब अपने आंखों को ढुरा करके मेरे तरफ देख करके मृदु मुस्काए, हल्की मुस्कान और स्नेह से भीनी बात करते हुए लड़काए बतराई, इस प्रकार से गोपीजन प्रार्थना करती हैं भगवान। श्री गोपियां उद्धव जी को कहती हैं, व्यंग करती हैं, उद्धव जी आप बहुत भाग्यशाली हैं, कृष्ण के पास रहकर भी कृष्ण के प्रेम में आप फंसे नहीं, धन्य हैं आप, बहुत भाग्य है आपका। कृष्ण के पास रह करके भी इधर ब्रह्म ज्ञान सिखाने आए हैं, योग सिखाने आए हैं, ये कैसे प्रचारक है। अब ब्रह्म दूत है कि कृष्ण दूत है, इस पर वे कहती है पेज नंबर 46 पर। इसके भाव को समझिएगा, शब्द दूसरा है लेकिन भाव बिल्कुल दूसरा है। पद 108 है, एक बार इसका अर्थ कर देता हूं, गाएंगे दूसरे कोई भक्त। उधो तुम हो अति बड़ भागी, अति बड़ भागी। उधो जी पर व्यंग कस रही हैं गोपियां, उधो तुम बहुत भाग्यशाली हो, अपना दुख देखकर भी कह रहे हैं कि तुम इस दुख में नहीं पड़े। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहीन मन अनुरागी। आप प्रेम के तगा से, रस्सी से दूर रहे, आपका मन कृष्ण के अनुराग में नहीं फंसा, बहुत भाग्यशाली। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी। पुरैन का पत्ता पानी में रहता है लेकिन पानी से कभी टच नहीं हुआ। वैसे ही आप मथुरा में श्याम सुंदर के साथ रहते हैं, उनके मित्र हैं, लेकिन आपका मन कृष्ण के प्रेम में थोड़ा भी सिक्त नहीं हुआ। ज्यो जलमाह तेल की गागर, बूंदन ताके लागे। अगर नदी में तेल की गगरी डुबाई जाए जिसमें चारों तरफ तेल लगा है तो डूबेगा लेकिन उस पर पानी सट नहीं सकता। अरे देखे जल के भीतर भी रहेगा तभी उसमें पानी सटेगा ना, ऐसे आप हैं, धन्य हैं आप। यहां आकर के आपको चाहिए था कि हरे कृष्ण का प्रचार करें तो आप आकर के ब्रह्मवाद फैला रहे, हम लोगों के हृदय को भी उससे हटाना चाहते, लेकिन हम तो बहुत बेवकूफ हैं। उनको कह रहे प्रीत नदी में पावन बोरो, दृष्टि रूप परागी। न आप प्रेम के नदी में पैर रखे हैं, न आपका नजर, आपका आंख रूप का अनुरागी हुआ, आपकी दृष्टि रूप परागी नहीं हुई, रूप में नहीं फंसी। हम तो इतनी बेवकूफ हैं, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चींटी ज्यो पागी। हम तो ऐसे हैं कि जैसे कोई चींटी गीले गुड़ को खाने को जाए तो तो उसी में फंस करके मर जाती है। ऐसे हम गए, हम तो हमको भी ऐसे ही कृष्ण से रहना चाहिए, कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। गुड़ चींटी जो पागी, आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा पिघले हुए गुड़ पर चींटी रहते, उसको निकालना पड़ता है, भगाना पड़ता है, मर जाती है, हटाना पड़ता है। हम तो ऐसी अबला है, हम इतनी भोरी हैं, कृष्ण से इतना प्रेम किया कि उसी में हम फंस गए, जैसे चींटी गुड़ में पक जाती है। हम लोग चींटियों को गुड़ में फंसते हुए चींटी को चींटा को देखे हैं, इसलिए बहुत जल्दी समझ में बात आ रही है। पहले गुड़ का चकरी बनाया जाता था और कोठा पर रख दिया जाता था, बहुत गुड़, और बरसात में वो एक हो जाता था पूरा बिगड़ कर, और उसे कोई चींटा या चींटी गई तो कुछ तो उसमें फंसी रहती थी, जीवित रहती थी, और उसे पंख भी फंस गया है, पैर भी फंस गया है, वो निकल। वास्तव में ऐसे कृष्ण में फंसना चाहिए, कोई कितना कुसंगी आवे, कितना भी दूसरे पंथ वाला कितना जोर लगावे, लेकिन न निकल पावे वो चींटी। इसको गाइए चित्तोदास, उधो तुम तो अति बड़ भागी, तुम हो अति बड़ भागी। इसके ऊपर पद है, इसमें गोपियां कहती हैं, उधो इतनी जाए कहो, जाकर के मथुरा में श्याम सुंदर से ये बात जरूर कहना कि इस समय वृंदावन न आवे, क्योंकि सब चीज बदल गया है। सब बल्लभी कहत हरिशो ये दिन, सब बल्लभी कहत हरिशो ये दिन मधुपुरी रहो। हे श्याम सुंदर, आप इस समय मथुरा ही रहिए, वृंदावन मत आइए, ये जाकर के कहना है, क्योंकि आज काल तुम ही देखत हो और तुम भी देख लिए उद्धव कि तपत तरणी समचंद, इस समय चंद्रमा सूर्य की तरह तप रहा है, देखे ना, विरहिणी गोपियों को चंद्रमा सूर्य की तरह लग रहा है, तीखा प्रकाश वाला। तो आजकल क्या स्थिति है, आजकल तुम ही देखत हो तपत तरणी समचंद, सम शब्द है सम, तो सुंदर श्याम परम कोमल तनु क्यों सही है नंदनंद। श्याम सुंदर तो अत्यंत कोमल शरीर वाले हैं, फिर इस ताप को कैसे सहेंगे, अतः यहां आने को मना कर दो। मधुर मोर पिक परुष प्रबल अति वन उपवन चढ़ी बोलत, वृंदावन के इस समय मोर और कोयल जो मधुर बोली बोलने वाले हैं, इस समय इनकी बोली बहुत परुष हो गई है, बहुत कठोर बोल रहे हैं, और वन में उपवन में पेड़ पर चढ़ करके बोल रहे हैं, बहुत खराब लग रहा है। सिंह ब्रिकन सम गाय बच्छ ब्रज बीथिन बीथिन डोलत, और जहां तहां गौए और बछड़े डोल रहे हैं, तो ऐसे लगते हैं कि सिंह और बाघ तेनुआ सब डोल रहे हैं। गौए सिंह जैसी खराब लग रही है, बाघ जैसी काटनी दौड़ती, तो ये गौए भी बुरी लग रही है। आसन असन बसन विष अहिसम भूषण भवन सिंगा भंडार, आसन जहां बैठने का जो जगह है, आसन असन भोजन और बसन कपड़ा, ये सब विष जैसा लग रहा है। आसन असन बसन विष अहिसम भूषण, और भूषण सांप के समान लग रहे हैं। भवन भंडार, और भवन ऐसा लग रहा है कि जैसे भंडार हो, जितना भी खड़र मड़र जिसमें रखा गया है, कोई भवन अच्छा नहीं लग रहा है, खराब लग रहा है। और जीतती तो फिरत दुसह दुर्म दुर्म प्रति धनुष लय सतमार, और जहां तहां वृक्ष पर, प्रत्येक वृक्ष पर कामदेव, सैकड़ों कामदेव अपना धनुष बाण लेकर के घूम रहा है मारने के लिए। वृक्ष बहुत खराब लग रहा है। सत्य मार का मार माने कामदेव, और सत्य माने सैकड़ों। तुम तो परम साधु कोमल मन जानत हो सब रीति, तुम तो विद्वान हो, साधु हो, ये सब रीति समझते हो, सूर श्याम को क्यों बोलाएं ब्रज, बिनता रे यह ईत। इस प्रकार की ये विपत्ति जो है ब्रज में, इसको जब तक टर नहीं जाती है तब तक वे क्यों आएंगे, यहां आना ठीक नहीं है, जाकर कह देना कि इस समय मधुपुरी में रहे। ऐसे श्रीकृष्ण के आते ही सब ठीक स्थिति हो जाएगी, लेकिन अभी गोपियों की भाषा देखे, वो कहते हैं नहीं, इस समय कह दो वहीं रहने के लिए, यहां सब बहुत बुरा वातावरण है। इस समय चंद्रमा सूर्य की तरह दाहक लग रहा है कृष्ण के विरह में, तो ये कह रहे हैं कि इस दाहक चंद्रमा के दाहकता को, ज्वाला को, सुंदर श्याम परम कोमल तन क्यों सही है नंदन, कैसे सह पाएंगे, इसलिए इस समय मना कर दो यहां आने से, वृंदावन आने से। मधुर मोर पिक परुष प्रबल अति, वन उपवन चढ़ी बोलत, सिंह ब्रिकन सन गाय बच्छ ब्रज, बीथिन बीथिन डोलत। अर्थ तो आप लोग समझ ही रहे हैं, ये गोपी भाव है। कभी कभी श्री गोपीजन भगवान से कह रहे हैं कि नहीं आना ठीक नहीं है, पर सभी उक्तियों का भाव ये है कि वे जल्दी आ जाए तो ये सब दुख मिट जाएगा। उद्धव जी ने कहा कि कृष्ण का चिंतन करो, कृष्ण का ध्यान करो, और इस प्रकार से कृष्ण के प्रेम में मत बहो, प्रेम बहुत दुखद है, इसमें मरण तक हो सकता है, शरीर छूट जाता है। तो गोपियां इसका उत्तर दे रही हैं, उधो प्रीति न मरण विचारे, यह गाना नहीं है, ये प्रेम मरने की चिंता नहीं करता है। अब कहते हैं कि मरना पड़ेगा, भले मर जाएंगे हम लेकिन कृष्ण से प्रेम नहीं छोड़ेंगे, तो कई उदाहरण दे रहे हैं कि कौन मरने का विचार नहीं करता है, मर जाता है प्रेम में लेकिन कभी सोचा नहीं, प्रेम छोड़ा नहीं। उधो प्रीति न मरण विचार है, प्रीति पतंग जरे पावक परी, जरत अंग नहीं टारे। फतिंगे का प्रेम देखिए, अग्नि में पावक में आकर के जल जाता है लेकिन देह जलने पर भी वो हटता नहीं, जरत अंग नहीं टारे। प्रीत परेवा उड़त गगन चढ़ी, गिरत न आप संहारे। पक्षी का, सारस पक्षी का प्रेम देखिए, सारस पक्षी का एक जोड़ा बिछुड़ जाता है तो दूसरा जोड़ा अपने को आकाश में उड़कर ले जाता है और पृथ्वी पर पटकता है कई बार, इसको तो हमने आंख से देखा है वृंदावन में, खिदिर वन में। एक पक्षी सारस बहुत उड़ता था, ऊपर जाता था और इसके बाद निश्चेष्ट अपने को पंख फैला करके नहीं छोड़ता था, गिरता था जमीन पर। तो हमने सहदेव बाबा से पूछा कि ये कौन सा पक्षी है, क्यों ऐसे कर रहा है, तो वही बताए कि ये सारस पक्षी है। सारस पक्षी में चाहे स्त्री पक्षी चाहे पुरुष पक्षी कोई बिछोड़ जाए तो दूसरा उसका जोड़ा अपने को अब जिलाता नहीं है, अपने आप ऊपर उठ करके पटकता है शरीर को, और इस तरह से 10-20 बार पटक करके और अपने जीवन को समाप्त कर देता है। इतना प्रेम है उसको अपने जोड़े से। मैं जब था खिदिरबन में, खैरा में, तो एक चेम्बर पर रहता था, तो वहां से मैं देखा, इस प्रसंग को मैं आंख से देखा हूं, मरते हुए पक्षी को अपने को पटक पटक करके। आत्महत्या करते हुए। प्रीति परेवा उड़त गगन चढ़ी, देखो प्रेम और सारस का, उड़त गगन चढ़ी गिरतन आप संभाले, और गिराता है अपने को संभालता नहीं। प्रीति मधुप के तकी कुसुम बसी कंटक आप प्रहार है, और मधुप का भौरे का प्रेम देखो कि केतकी कुसुम पर बैठता है जिसमें बहुत कांटे होते हैं, कंटक आप प्रहार है, अपने आप कंटक का प्रहार सहता है भौरा, कांटे उसमें लगते हैं लेकिन फिर भी वो उसके फूल पर बैठता ही है। प्रीति जान जैसे पै पानी जान अपन पर उजार है, पानी और दूध का प्रेम देखो, पानी अपने आप को जला देता है दूध के साथ, जब दूध होटा जाता है तो उसमें पानी जलता है, पानी उसके पहले दूध का संग छोड़कर भाग नहीं जाता है। चूल्हा पर बैठाया जाता है दूध, उसके साथ पानी बेचारा जल जाता है लेकिन दूध का साथ नहीं छोड़ता है, फिर दूध से अलग अपने आप हो जाए तो औंटने की क्या जरूरत पड़ेगी, लेकिन दूध जलता है गर्म होता है उसके साथ पानी पहले जलता है, पानी जब जल जाता है तो दूध गाढ़ा हो जाता है। जब वह इस तरह से दुख में भी महाज्वाला में भी जल जाता है और दूध का संग नहीं छोड़ता है तो हम कैसे श्याम सुंदर को छोड़ देते। उधो प्रीति नंबर अनविचार है, प्रीति जान जैसे पय पानी जान अपन को उजारे, प्रीति कुरंग नागलस लुब्धर तानी तानी शरमारे। प्रीति देखो हरिण का गीत के प्रति शब्द के प्रति इतना प्रेम है कि तान तान करके बहेलिया कई बार मान मारता है लेकिन वो शब्द रस में ही विभोर रहता है। इस साक्षात बाण मारे बहेलिया लगे खच से और फिर भी उस दुख की परवाह न करके वो शब्द सुनता है, नाद रस शब्द रस। और प्रीति जान जननी सुत कारण को न अपन पोहार है, प्रीति जान जननी सुत कारण को न अपन पोहार है, और प्रेम देखना है तो मां का प्रेम देखो बच्चे के प्रति, अपने उदर में रखती है बच्चे को पालती है पोसती है। और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि माँ जाड़े का भी दिन है लेकिन अगर बच्चा पेशाब कर देता है खाट पर बेड पर तो माँ उस पेशाब किए हुए ठंडे बेड पर सोती है और बच्चे को सूखे पर रखती है, इसका विचार नहीं करती है। कभी कभी बच्चा माँ का स्तन काट देता है दांत होने पर फिर भी उस दुख को नहीं गिनती है, बच्चे को दूध पिलाती ही है। ये प्रेम है बच्चे के प्रति माता का प्रेम। तो क्या मां कभी बच्चे को पटक देती है? अगर बच्चा उसके सिर पर भी पेशाब करता है तो क्या उसको पटक देती है? बल्कि लोक में तो कहते हैं लड़का के मूत्र चरना चना अमृत है ना। सयाना आदमी चढ़ करके मुंह दे तो लड़ाई हो जाएगी लेकिन बच्चा यदि छोटा बच्चा है पेशाब कर देता है तो कोई क्रोध नहीं, उल्टे स्नेह ही होता है। तो ये प्रेम है माँ का। और इतना ही नहीं, वो सयाना भी होता है कोई सेवा नहीं करता है लोफर बन करके घूमता है फिर भी माँ बेटे की चिंता करती है। बेटा कहीं चला जाता है चाहे भजन करे चाहे कुछ करे, मां की सुधि नहीं लेता है फिर भी मां उससे प्रेम करती है। और वो जाकर के कहीं कोई महामाया रख लिया और मां से बात भी नहीं करते, मां से प्रेम नहीं करते, फिर भी मां बेटे की चिंता करती ही है। और हमारी संस्था में स्कान में तो इतने विरक्त हो गए लोग कि अब वो कहते हैं ये माता पिता माया है, शिक्षा देते दूसरों को, प्रीचिंग करते हैं, परिवार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, माता पिता माया है और स्वयं महामाया के साथ चल रहा है, यह आश्चर्य की बात है। तो महामाया स्त्री ही है ना, माता पिता माया नहीं है, किसी शास्त्र में नहीं कहा गया है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, देवो मतलब भगवान, माता भगवान है, पिता भगवान है, ऐसे कहकर के सेवा की जाती है। मातृ माया भव ऐसे कहीं नहीं है। इस तरह से ये कहा जा रहा है कि बेटा मां से प्रेम नहीं करता है, इसकी शुद्धि नहीं लेता है, लेकिन मां बेटे के लिए ही मरती रहती है, देखा गया। ये सच्चा प्रेम है। भगवान से भी गोपियों ने पूछा कि तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक प्रेम करने पर प्रेम करते हैं और दूसरे कोटि के हैं जो प्रेम करने पर, जो प्रेम नहीं करने पर भी प्रेम करते हैं, और तीसरे कोटि के हैं कि प्रेम करने वाले या नहीं करने वाले किसी से प्रेम नहीं करते। तो इसमें से आप कौन हैं, अब बताइए। हम लोग आपसे प्रेम करते हैं और आप हमें छोड़ करके वन में चले गए, तो आप किस कोटि के हैं? से मतलब भगवान अपने मुख से स्वीकार करें कि मैं कृतज्ञ हूं, मैं प्रेम नहीं कर पाता हूं, भगवान से क्षमा मंगवाने के लिए गोपियां बात कह रहे हैं, या प्रेम के रहस्य का उद्घाटन करने के लिए? तो भगवान कहते हैं सखियों, जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं, यहां कोई प्रेम नहीं है, न धर्म है, न सौहार्द है, कुछ नहीं है। ये तो बनिए का आदान प्रदान है, तुम दे रहे हो तो हम भी दे रहे हैं, तुम 10 रुपए से न्योता पूरा है तो हम भी पूरा देंगे, ये तो कोई प्रेम नहीं हुआ है। कोई प्रेम कर रहा है तब प्रेम करे, ये प्रेम नहीं। भगवान कहते हैं सच्चा प्रेम वहां है जहां प्रेम नहीं करने पर भी प्रेम किया जाता है। तो वहां उदाहरण देते हैं भगवान माता पिता का और संतों का, भगवान यही उदाहरण दिए। स्त्री पुरुष के जो बीच जो प्रेम है उसको प्रेम भगवान ने कहा ही नहीं, पर माता पिता के प्रेम को कहा कि ये प्रेम है। बच्चे प्रेम नहीं करते हैं, सयाने होने के बाद भी, फिर भी माता पिता प्रेम करते हैं, या संत, कोई उनसे प्रेम करे या न करे वे सब सबके प्रति समभाव से प्रेम करते हैं। और प्रेम करने पर भी जो नहीं करते हैं, और नहीं प्रेम का तो कोई प्रश्न नहीं है, नहीं प्रेम करने पर प्रेम नहीं, तो चार प्रकार के हैं, आत्मा राम व्याप्त काम अकृतज्ञ गुरुद्रोह, चार प्रकार के लोग होते हैं जो प्रेम करने पर भी नहीं करते, न प्रेम करने वाले के साथ वो क्या करेंगे। तो आत्मा राम है, उनको पता ही नहीं है कि हमसे कौन प्रेम करता है और कौन हमसे झगड़ा कर रहा है, उनको पता ही नहीं चलता है। आत्मा राम है, आत्मा में रमण करते हैं, भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं, उनको तो पता ही नहीं लगता। तो दूसरे श्रेणी को पता लगता है कि ये व्यक्ति हमसे प्रेम करता है, लेकिन वो आप्त काम होते हैं, उनकी जो कामनाएं हैं सब पूरी होती हैं, तो उनको कोई जरूरत ही नहीं महसूस होता है कि कोई हमको कुछ प्रेम करे, दे ले। पता लगता है कि ये व्यक्ति हमसे प्रेम कर रहा है और ये व्यक्ति घृणा कर रहा है, लेकिन घृणा से न उनको कोई ऊब है और न प्रेम से कुछ लेना देना है। तो आप्त काम, आप्त माने प्राप्त काम, उनकी कामनाएं पूरी हो चुकी हैं, और इसके बाद भगवान अब संसारिक लोगों के बारे में बोलते हैं। अकृतज्ञ गुरुद्रोह। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किए हुए उपकार को जानते ही नहीं है, अ माने नहीं, कृत माने किए हुए उपकार, व्य माने जानने वाले, उनको पता ही नहीं चलता है, अज्ञता बस उनको पता नहीं चलता उनको। जैसे किसी किसी को ये कोई अनुसंधान ही नहीं है, ये एक नंबर के मूर्ख लोग जो कि माता पिता हमारा इतना उपकार किए हैं, जन्म दिए, पढ़ाए लिखाए, इस पर कभी ध्यान ही नहीं देते हैं, को पता ही नहीं है, अज्ञ लोग। लेकिन कुछ लोगों को पता होता है कि माता पिता हमारी इतनी सेवा किए हैं, इनकी सेवा करनी चाहिए, पर फिर भी वे नहीं करते हैं, ऐसे लोग गुरुद्रोह, गुरुद्रोही, माता पिता से ही द्रोह करते हैं, विरोध करते हैं। परिवार के बड़े बूढ़े लोग कितना किए हैं, खास करके माँ, पिताजी और बड़ा भाई, ये चाचा, ताऊ, ये सब बहुत उपकार किए, लेकिन जानबूझ करके इनको उपकार करना नहीं, उल्टे द्रोह करते हैं, उनकी उपेक्षा कर देना ही द्रोह है। द्रोह का अर्थ ही नहीं कि उनके साथ झगड़ा मारपीट करे तब गुरुद्रोही माना जाएगा, केवल माता पिता के गुरु की उपेक्षा कर देना ही उनके साथ द्रोह करना है। ऐसे लोग ये चार प्रकार के होते हैं। तो अब आप कौन से श्रेणी में हैं? तो भगवान ने कहा कि नाहम तु सख्य, मैं तीनों में कोई नहीं हूं, मैं विलक्षण प्रेमी हूं। भगवान ने कहा तीनों में मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो भजन करने वाले मेरा मुझसे जो प्रेम करते हैं उनसे भी प्रेम नहीं करता हूं। ना हम तो सख्य भजतो भी जंतु भजन मनीषा मनोवृत्ति रहते, मैं चाहता हूं कि हमारे जो भक्ति कर रहे हैं, हमसे जो प्रेम करते हैं, उनकी अनुवृत्ति, उनके चित्त की धारा हमेशा मुझ में लगी रहे, इसलिए मैं प्रेम का उतना बदला नहीं देता हूं। अगर बदला दे दूं, उनके समान ही प्रेम करूं, तो वो कितना फूल जाएंगे, कितना मान करेंगे, तो तुम लोगों ने देख ही लिया। मैं चाहता हूं कि हमारे लिए लोग तड़पते रहें हमेशा, इसीलिए मैं मिल मिल करके भी छोड़ जाता हूं। गोपियों ने इसी पर प्रश्न किया था कि आप बुलाए अपने बांसुरी से और हमको छोड़ करके अदृश्य क्यों हो गए। तो भगवान कहे कि मैं इसीलिए हुआ कि मुझमें चित अखंड लगा रहे। जब कोई प्रिय वस्तु, प्रिय व्यक्ति मिलमिल करके बिछुड़ जाती है तो उसमें ज्यादा चित का अभिनिवेश होता है। जब मैं आप लोगों के साथ था, रासलीला में नृत्य कर रहा था, तो आपको गर्व हो गया कि हम सबसे सौभाग्यशाली स्त्री हैं, महान हैं, तब मैं छिप गया आपका अभिमान तोड़ने के लिए। ये लोक के लिए भगवान बोल रहे हैं, गोपियों के लिए नहीं। तो जैसे किसी व्यक्ति को जो निर्धन है, कुछ धन है, कंगाल है, और उसको एकाएक बहुत धन मिल जाए और वो धन मिल करके फिर चला जाए तो धन की चिंता में उसे न भूख लगेगी न नींद लगेगी, वैसे ही मैं मिल मिल करके छिप जाता है, भगवान ये सिखा रहे थे। तो भगवान उस समय उस मीटिंग में जमुना जी के पुलिन पर ये कहे कि माता पिता की प्रीति सच्ची प्रीति है, पति पत्नी का जो प्रेम है ये प्रायः सच्चा नहीं होता है, एक मोह आकर्षण रहता है, लेकिन सच्चा प्रेम माता पिता का बच्चे के प्रति। उसी को श्री गोपिया कह रहे हैं, प्रीति जान जननी सुत कारण को न अपन पौहार। माता का प्रेम, इसके साथ ही पिता का भी प्रेम समझ लेना चाहिए। बच्चा बीमार हो जाता है तो माता पिता डॉक्टर के पास ले जाते हैं, अपने पास पैसा नहीं रहता है तो ऋण लेकर के भी बच्चे की दवाई कराते हैं। ये तो प्रायः देखा जाता है। लेकिन बेटा ऋण लेकर के माता पिता की सेवा कभी किया ये नहीं देखा जाता। घर में है कुछ कर दिया, वो भी लोक के लज्जा से भय से करता है कि लोग क्या कहेंगे कि बाप गिरे हुए हैं और ये कुछ नहीं कर रहा है, तो उस भाव से करता है, प्रेम से नहीं करता है। है नहीं, बात बिल्कुल सत्य है। प्रायः ऐसी बात है, शायद कोई हजारों हजारों में एक श्रवण कुमार जैसा कुछ सोचता होगा, माता पिता के बारे में चिंता करता है। जब बाजार भी आदमी जाता है, मेला जाता है, तो माता के लिए शायद ही कोई लाता होगा, लेकिन रानी के लिए सब लाते हैं, कुछ न कुछ ला लेकर के आओ। और माता पिता घर पर हैं, चाहे पत्नी भी घर पर है, लेकिन अपने समोसा काट रहे हैं, खा रहे हैं बाजार। कभी ये इच्छा नहीं होती कि ले चले इधर। ये राक्षसों का काम है वास्तव में, इस तरह से पेटू बन करके जाता है खाना पीना और दूसरों को नहीं खिलाना, माता पिता को नहीं खिलाना। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि दो प्रकार के प्राणी है, एक असुर एक सूर। तो सूर वे हैं जो भगवान के भक्त हैं, देवता वे हैं जो भगवान के भक्त हैं, असुर स्तर भी पर जाए। और जो भगवान के भक्त नहीं है वे असुर। असुर का मतलब कोई शरीर से बनावट में भिन्न नहीं है, सब आदमी ही, लेकिन उसमें जो मनोवृत्ति है, गुण है, उसके अनुसार भगवान विभाजन किए हैं कि असुर है असुर है। सूर श्याम सौ प्रीत गोपिन की कहुकै से निर्वार है। सूरदास जी के शब्दों में श्री गोपियां कह रहे हैं कि हमारा प्रेम श्याम सुंदर से है, श्याम से है, हम कैसे उस प्रेम को हटा लें, कभी संभव नहीं। अब गायक बदल करना चाहिए। नित्यानंद प्रभु गाते हैं, पहले बहुत अच्छा गाते हैं। ये पहले गाते थे तो गोरखपुर में भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार के साथ ही राधा बाबा इनके गीत को पसंद करते थे, हमेशा गवाते थे। जब जाते थे तो बाबा जरूर गवाते थे। इस पद में विद्यापति ठाकुर कहते हैं श्रीमती राधा रानी के भाव में, ललिता जी कह रही हैं राधा रानी से कि नंद कनंदन कदम्ब कतरु तर धीरे धीरे मुरली बजाओ। नंद महाराज के पुत्र श्री कृष्ण कदम्ब वृक्ष के नीचे धीरे धीरे बंसी बजा रहे हैं और वो चले गए हैं जहां पर बैठना था, बात तय हुई थी। समय संकेत निकेतन वही सब बैठे हुए हैं, तुमको निहार रहे कि कब जाओगी। जो भी गोपी उस रास्ते से जाती है तो जने जने पूछे बनमार बनवार, सबसे पूछ रहे हैं तुम्हारे विषय में, तो तुमको जाना चाहिए। देखो तुम भी मतिमान हो, बुद्धिमती हो, और मधुसूदन भी बुद्धिमान है। विद्यापति ठाकुर कहते हैं भनई विद्यापति सुनबर जौवती। विद्यापति कहते हैं, और ललिता जी तो समझा ही रहे, विद्यापति जी भी समझा रहे हैं राधा रानी को। यह विद्यापति के शब्दों में ललिता जी कहती हैं कि तुम बुद्धिमान हो, देखो समय बीत रहा है और मधुसूदन विकल हैं, उस पथ से गुजरने वाली प्रत्येक गोपी से पूछ रहे हैं तुम्हारे विषय में। तो भनई विद्यापति सुन बर जवती है सुंदर ज्योति बंदह नंद किशोर, नंद किशोर की वंदना करो अर्थात जो चाहते हैं तुम करो जाओ उनके पास। यह पद राधा बाबा को बहुत प्रिय था, हमेशा सुनते रहते थे। अरे नित्यानंद जाते थे तो ये तो जरूर इस पद की चर्चा करते थे और सुनते थे। वो कभी कभी कहते थे क्या गाऊं क्या गाऊं, तो संकेत था नंद कर नंद मां यही गाओ। सबसे बड़ी बात है कि एक महान वैष्णव कवि का लिखा हुआ है, भक्त का, जिनके कविता को भगवान भी सुनते थे चैतन्य महाप्रभु, और भाव विभोर हो जाते थे। विद्यापति ठाकुर जयदेव जी का गीत गोविंद और चंडीदास का गीत, विरह बिथाए प्रभु राखय पराम, स्वरूप दामोदर जी का गान और राय रामानंद जी की कृष्ण कथा, रामानंदर कृष्ण कथा स्वरूपेर गान, विरह बिथाय प्रभु राखय पराग। स्वरूप दामोदर गोस्वामी गाते थे, स्वरूप दामोदर जी, तो वे विद्यापति ठाकुर के पद, चंडीदास के पद और जयदेव जी के पद, यही मुख्य रूप से गाते थे। तो स्वरूप का गान और राय रामानंद की कृष्ण कथा, यही दोनों चैतन्य महाप्रभु के प्राण बचाते थे, नहीं तो विरह में वे ऐसे कहा नहीं जा सकता, शरीर छोड़ देते, लेकिन बहुत दुर्दशा थी। इतना प्रिय गीत लगता था भगवान चैतन्य महाप्रभु, खास करके विद्यापति ठाकुर के जो संयोग के पद हैं, इससे उनको बहुत सुख मिलता था। विरह में व्याकुल रहते थे पर संयोग के पद को सुनकर के तुरंत सुखी हो जाते थे। जगन्नाथपुरी में भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में रहते थे, तो उद्धव जी ने जब उपदेश दिया गोपियों को कि तुम्हें ध्यान करो कृष्ण का, वे सबके हृदय में है, सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं, उनको देखने का प्रयास छोड़ करके और ध्यान करो, ध्यान में भी कम सुख नहीं है, वो बताए बहुत सुख है, तो कहां कहां देखते चलोगी, वो तो अपने कार्य में फंसे हैं, कंस का वध किए, मथुरा का राज मिला, तो कहां कहां घूमेंगे, अभी गाय चराने और तुमसे मिलने के लिए यहां थोड़े आएंगे, उनको फुर्सत ही नहीं है, उद्धव जी ये कहे। तो एक प्रकार से गोपियों ने ये समझा कि ये हमें जोगी बनने के लिए कह रहे हैं, ध्यान करने के लिए कह रहे हैं, तो ध्यान के लायक और वेशभूषा भी होनी चाहिए। तो इसको गोपियां कह रही हैं कि अरे उद्धव, तुम और बात में बहुत सयाने हो, लेकिन अबलाओं के विषय में अयाने हो। तो पद 46 पर है एक गीत, मधुकर महाप्रवीण सयाने, हे मधुकर, तुम्हें और विषय में महाप्रवीण हो, दक्ष हो और चतुर हो, परंतु स्त्रियों के विषय में, स्त्रियों को क्या करना चाहिए, उनके हृदय की गति को जानना, उनके भाव को जानना, इस विषय में तुम बिल्कुल अज्ञ हो। भ्रमर के ब्याज से उद्धव जी से बात कर रही हूं। मधुकर महाप्रवीण सयाने, जानत तीन लोक की बातें, अबलन काज आयाने, ऐसा नहीं आया अ है, अबलन काज स्त्रियों के कार्य को करने में, तो स्त्रियों का जहां मतलब सधता है उस विषय में तुम बिल्कुल अज्ञ हो, और कार्य में तेज हो, न्याय शास्त्र पढ़ करके स्वर्ग से आए हो, बृहस्पति जी के शिष्य हो, बहुत बुद्धिमान हो, मधुकर महाप्रवीण, महाप्रवीण हो, लेकिन महाप्रवीण हो, सयाने हो, चतुर हो, जानत तीन लोक की बातें, तीनों लोक की बात जानते हो, किस लोक में क्या व्यवहार होना चाहिए। स्वर्ग में जब पढ़ करके आए हो तो इस लोक में भी सब जानते हो, लेकिन अबलन काज अयाने, अबलाओं के विषय में, स्त्रियों के विषय में तुम अयाने हो, अज्ञ हो, इसीलिए तो ऐसी बात कर रहे हो। उदाहरण देती हैं, जे कच्छ कनक कटोरा भरी भरी मेलत तेल फुलेल, जिस केस में हम कटोरा में तेल भर भर करके लगाती हैं, ऐसे जानते हैं स्त्रियां ज्यादा तेल लगाती हैं क्योंकि उनका बाल बड़ा बड़ा होता है, इसमें ज्यादा तेल की जरूरत होती है, तेल फुलेल, तेल लगाती हैं, फुलेल लगाती हैं, फुलेल क्या चीज है, किताब रहता तुम्हें बताता है, तेल लगाती हैं, फुलेल लगाती हैं, मतलब बहुत अपने शरीर को सजा करके रखती हैं। या श्याम सुंदर हमारे केस में तेल लगाए हैं कटोरा भरी भरी, कटोरा भर भर करके तेल, कि कटोरी से कटोरा बड़ा होता है, छोटे उस बर्तन को कटोरी कहते हैं और उससे थोड़ा बड़ा होता है तो कटोरा कहते हैं, तो कटोरा में तेल भर भर करके श्याम सुंदर लगाए हैं हमारे केस में, और तीन के सन को भस्म बताओ टेसु कैसो खेल, और तुम अब बता रहे हो कि जटा रखो इसमें धूल लगाओ, धूल लगाने से ही जटा बनती है ना। जिन केसों में श्याम सुंदर कटोरा भर भर करके तेल फूले लगाए, उस केस को ने तुम भस्म लगाने के लिए कह रहे हो, राख लगाने के लिए कह रहे हो, तो टेसु कैसो खेल, ये तो बच्चों के खेल जैसा है। बच्चे कभी कभी टेसु का खेल खेलते हैं, घर बनाते हैं बालू का कुछ, और इसके बाद लता लुती करके खत्म कर देते हैं। खेले होंगे सभी लोग प्राय खेल, घर से बालू से घर बनाते हैं और लास्ट में स्वयं ही नष्ट कर देते हैं, घर जाने से पहले लाता लुटी सब लात से ही मारते हैं, इसको टेसु का खेल कहते हैं। फिर तुम टेसु का खेल समझे हो, जिन केसों का हमने इतना श्रृंगार किया, तेल डाला, फुलेल डाला, श्याम सुंदर संवारे, और इसको तुम भस्म लगाने के लिए बोलते हो, तुम अबलाओं के विषय में इतने अज्ञ हो। कहीं स्त्रियां योग करती हैं, जाकर के मथुरा में सिखाओ पुरुषों को, जिनके सन कबरी गई सुंदर अपने हाथ बनाई, जिन केसों में चोटी गूथे श्याम सुंदर कंघी करके और स्वयं ही कबरी बनाए, कबरी माने चोटी, तिनको जटा धरन को उधो कैसे कह कही आई। जिन केसों को श्रीकृष्ण ने संवारा, बेणी गूथा, और उन केसों को जटा बनाने के लिए कह रहे हो, कैसे कहे, तुम्हारी बुद्धि में ये बात कैसे आई। तिनको जटा धरन को उधो कैसे कह कही आई, कैसे तुम्हारे मुंह से बात निकली, सिखाने चले हो, बहुत उपकार करने चले हो। और जिन श्रवणन ताटंक खुशी और करण फूल खुटिलाऊ, जिन कानों में हमने कर्ण फूल पहना, कर्णभूषण, खुटिलाओ का क्या अर्थ है, कोई गहना है, जिन के सन जिन श्रवणन ताटंक विराजत, ताटंक खुशी और कर्ण फूल कुटिलाओ, जिन कानों में हमने इस कुंडल धारण किया, कर्णफूल धारण किया, खुटिलाऊ, खुटिलाऊ का अर्थ होता है जो कानों में, कानों पर ऊपर से नीचे तक स्त्रियां गहना पहनते हैं, उसे खुटिलाऊ कहते हैं। और कर्ण फूल जो कान में लगाए छोटा सा, और कुंडल जो लटकता है कान में। तो हमने जिन कानों में कुंडल धारण किया, कर्ण फूल धारण किया और खुटिलाऊ धारण किया, कानों पर सोने का गहना, तीन श्रवणन कश्मीरी मुद्रा लटकन चीर झलाऊ, और तुम उन कानों में कश्मीरी मुद्रा धारण करने के लिए कह रहे हो। कश्मीरी मुद्रा का अर्थ है, कोई कोई योगी होते हैं कनफट्टा योगी, बहुत बड़ा बड़ा रिंग धारण करते हैं, कश्मीरी मुद्रा कहते हैं। तुम योगी बनने के लिए और फटे कान वाले जैसे योगी होते हैं, जहां था मांगते रहते हैं, ऐसा बनने को कह रहे हो। चीर झलाऊ, और चीर पहनने के लिए, वस्त्र पहनने के लिए कह रहे हो, झोल पहनने के लिए कह रहे हो, झलाऊ झलाऊ मैंने झूलता रहे। कभी कभी कोई कोई कंबल लेते हैं और कंबल को ही सिला करके बस कंबल लटकता रहता है, और यहां तक बांह होती है, कंबल ही ढोए चलते हैं। बड़ा आसानी का काम है साधुओं के लिए, केवल कंबल के दोनों तरफ सी लेते हैं और बस कपड़ा कुर्ता हो गया। जितना बेढंगा कपड़ा पहनना होता है कुछ लोग पहनते हैं, और झोकर झलाओ। तुम वस्त्र बता रहे हो, कैसे वस्त्र पहने? भाल तिलक काजर चखनासा नकबे सरीनथ फूली। हम अपने सिर पर सौभाग्य का तिलक की करती रहती थी, और चख काजल, और आंखों में काजल लगाती थी, नाक में नकबेसर लगाती थी, नथफोली लगाती थी। नकबेसर जो नाक के पास लटका रहता है, और नथफोली मतलब नाक में जो फूल लगाया जाता है, ये लगाई है। ये सब तजी हमरे मिलन को उज्जवल भस्मी खुली, और ये सब छोड़ करके अब तुम उज्जवल भस्मी लगाने को कह रहे हो। कंठ सुमाल हार मनी मुक्ता हीरा रसन अपार, ताहि कंठ बांधवे के हित श्रृंगी जोग श्रृंगार। हमने अब तक केवल माला धारण की है और मणियों की माला लगाई है, मुक्ता धारण किया है, हीरा का चेन पहना है सिकरी, और ऐसे कंठ में तुम श्रृंगी धारण करने को कह रहे हो। श्रृंगी मतलब सिंह से बना हुआ कोई चीज, जोग का श्रृंगार करने को कह रहे हैं। जिन कंठों में हमने क्या क्या धारण किया, इन कंठों में तुम हाड़ धारण करने को कह रहे हो। सिंह है, हाड़ ही है ना, चाहे गाय का हो चाहे भैंस का हो। सिंह जिहमुख मित सुभाखन गावत, सुभाखत गावत करत परस्पर हास, तामुख मौन गहे क्यों जीवे घूटे उरद श्वास। जिस मुख से हम अपने प्रियतम के साथ बात करती थी, गाती थी, परस्पर हंसी करती थी, और उस मुख को कह रहे हो कि मौन हो जाओ, हम बिना बोले कैसे जिएंगे। तामुख मौन गहे क्यों जीवे घूटे उरद श्वास, और सांस को और दीर्घ करके घोटने के लिए कह रहे हो, प्राणायाम करने के लिए कह रहे हो। पर हम लोगों को देख करके तुमको बात करनी चाहिए ना, कि क्या इनकी विधि है, किस तरह से कृष्ण से प्रेम करती। तुम हम लोगों को जोग मत सिखाओ। और ऊर्ध श्वास करके, प्राणायाम में यही होता है ना, सांस खींच करके और रोको, मतलब घूट है उसको घोट लो। ये सब हमसे नहीं हो सकता।
कंचुकी छीन उबटी घस चंदन सारी सारस चंद अब कंथा एक अति गुदड़ क्यों पहिरे मतिमाना। हम बहुत सूक्ष्म में फाइन कंचुकी पहनी है अब तक, छीन कंचुकी, पतले कपड़े की कंचुकी पहनी है और उबटी घसी चंदन और उबटन लगाई है, चंदन घिस घिस करके अपने अंग पर लगाई है। साड़ी सारस चंद, हम ऐसी साड़ी पहनी है अब तक कि जिस पर कमल का फूल बनाया गया था और चंद्रमा का चित्र बनाया गया था, ऐसी साड़ी पहनी है। और तुम्हारे कहने से अब हम कंथा गुदड़ ओढ़ेंगे पहनेंगे। अब कंथा एक अति गुदड़ क्यों पहरे मत मन। गुदड़ी, गुदड़ी तो छोटी होती, गुदड़ बड़ा होता है। तो कई पुराने कपड़ों का चिथड़ा लगा करके बनाया जाता है, सो गुदड़ी कहते हैं। कोई नया कपड़ा तो एक भी तरह नहीं होगा, जितना पुराना कपड़ा और उसको बहुत मोटा बहुत लंबा जो होता है उसको गुदड़ कहते हैं। गुदड़ी होती है और गुदड़ होता है। गुदड़ी तो देखे ही है, गुदड़ को बहुत कम देखे हैं। गुदड़ एक बाबा पहनते थे वृंदावन में। एक बार गुदड़ को निकाल करके वो ट्रेन में रखे थे एक जगह, तो टीटी पूछा इतना भारी क्या चीज है, आपको इसका दाम देना पड़ेगा, भारी था तो उसका दाम देना पड़ेगा। तो बाबा, उनका क्या नाम था, वो बाबा खुद निकाल करके पहन लिए कि हमारा पोशाक है। तो मान लो कोई वजन में 100 से ज्यादा हो तो उसका ज्यादा भाड़ा लोगे, ये तो हमारा पोशाक है, अब क्या भाड़ा लोगे। वो तो चकित हो गया टीटी देख करके कि इनका पहनाव है, गुदड़ था वो। घर घर में गुदड़ी तो होती है, लेवा जिसको कहते हैं, गुदड़ी वही है। तो हमें क्यों पहने, हम बहुत सूक्ष्म में कपड़े की, फाइन कपड़े की चोली पहनी है, चंदन लगाई है, हमारे साड़ी पर, हमारे साड़ी पर हमेशा कमल और चंद्रमा का फूल बना रहता था, अब हम क्यों ओढ़े। उधो उठो सबय पाल आ गए, सब लोग प्रणाम करती हैं, यहां से उठो और जाओ भागो। उधो उठो सबय पाल आ गए, देखो ज्ञान तुम्हारो, तुम्हारा ज्ञान देख लिया, बस तुम पर भरोसा नहीं है, किसी पर भरोसा नहीं, हमें केवल भरोसा श्याम सुंदर पर है। सूरदास मुख बहुरी देखी है, जीजो कान हमारो, हम फिर देखेंगे श्याम सुंदर का मुख, हमारे श्याम सुंदर जीवित रहे सुख से रहे, कभी तो कभी भेंट होगी ना, लेकिन ये बीच में समझौता कराने मत आओ, इस प्रकार की बात कहकर। सूरदास मुख बहुरी देखी है, जीजो कान हमारो, हमारे कृष्ण जीवित रहे सुख से रहे, वही हमारे दुख को समझेंगे। तुम लोग ये पागल आकर के कहते हो ध्यान करो समाधि करो, ये हम नहीं करेंगे। प्रणाम करती है, बस दंडवत है आपको, जाइए। बहुत उपकार कर लिए। ये सब चीज धारण करने से थोड़े भगवान मिलते हैं। अब गुदड़ी ओढ़ करके घूमिए और एक माला जप नहीं कीजिए तो इसके ओढ़ने से क्या होगा। कमंडल बहुत भारी ले लीजिए और कमंडल भारी लेकर के और उठिए 8 बजे, तो इससे तो लोटा लेकर के शौच जाने वाले पानी पीने वाला अच्छा है कि वो मंगल आरती में आ जाते हैं, है ना। भारी त्रिशूल उठा करके चलना और क्या क्या, बहुत भारी तिलक चौड़ा चौड़ा, इससे थोड़े भगवान में प्रेम होता है। गोपियां प्रकारांतर से भक्ति विरुद्ध योग पर आक्षेप कर रही है। और वास्तव में गोपियां क्या कर रही है, सूरदास जी सब कर रहे हैं। सूरदास जी महाभागवत कृष्ण प्रेमी थे, तो वे इस तरह से भक्ति से विरुद्ध बातों को खंडित कर रहे हैं। और प्रीचिंग करने आए हैं मथुरा से उद्धव जी, ध्यान करने के लिए कहा। सब गोपियां कहती हैं बस बस तुम्हारी बुद्धि का पता लग गया, तो प्रणाम करती हैं सब लोग, अब यहां से जाओ, अब हमारे प्रियतम श्याम सुंदर से ही जो होगा सो होगा, बस वो जीवित रहे, वो सुख से रहे, बस यही प्रार्थना है विधाता से। तुम तो जाओ, तुम तो हमारा कर दिए उपकार। हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण।